प्रातः क्लास चल रहा था 30/3/1967 गीत चला है ओम नमो शिवाय पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। ऊंचे से ऊंची स्टेज है ना, इसलिए गाया जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान कौन है? कौन है ऊंचे से ऊंचा? अरे कोई आत्मा है ऊंचे से ऊंची स्टेज वाली? कौन है? बड़ी चक्कर में फंस गए भाई। अच्छी महिमा उसकी क्या है? ऊंचे से ऊंचा भगवंत भाई, वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। सुप्रीम बाप है, साकार मनुष्य सृष्टि का। सुप्रीम टीचर भी है, साकार मनुष्य सृष्टि में, और सदगुरु तो होता ही है साकार। सच्चा गुरु जो सिख लोग गाते हैं, एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त। तो चलो जरूर ये तीनों ही इसको अभी ये सर्विस करनी पड़ेगी। इसको ये सर्विस किसको करनी पड़ेगी समझाने की? इसको किधर इशारा किया? नारायण की तरफ इशारा किया। वो नारायण बनेगा तो सर्विस करेगा है। जरूर ये तीनों ही सर्विस इसको करनी पड़ेगी। किसको? इसको। बाजू में बैठे हुए को इसको कहा जाता है या सन्मुख बैठे हुए को कहा जाता है इसको? है तुम बच्चों को कहते हैं तुमको, जो बाजू में उठा के रख दिया, सन्मुख बैठ करके उससे बात नहीं करते, बोलते भी हैं मैं तुमको सुनाता हूं और ये बीच में सुन लेता है। तो बताया इसको अभी ये सर्विस करनी पड़ेगी। पड़ेगी क्या? मजबूरी आ गई क्या है? क्या मजबूरी आ गई इसको? इसको माने किसको? ब्रह्मा बाबा को। क्या मजबूरी आ गई? जो 67 में बोला इसको ये सर्विस करनी पड़ेगी, समझाने की। क्या समझाने की है? ओ, भगवान की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। गीता के भगवान की कहाँ बात हो रही? बात हो रही है सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सदगुरु एक ही गाया जाता है, गाया जाता है। गायन पूजन यादगार कहाँ के है? संगम युग में कोई ने बाप टीचर सदगुरु का ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाया, उसके लिए गाया जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान। ऊंच और नीच इस दुनिया की बात है या पारलोक की बात है? है इस दुनिया की बात है। तो ये समझाने की सर्विस किसको बताई? खास करनी पड़ेगी, पड़ेगी। अभी भले चाहता है या नहीं चाहता है, बुद्धि में बैठा है नहीं बैठा है, समझता है नहीं समझता है, लेकिन इसको ये समझाने की सर्विस करनी पड़ेगी। किसको समझाने की है? ब्रह्मा बाबा को तो करनी पड़ेगी, लेकिन समझाएगा किसको? प्रजापिता को समझाएगा है?
यही बात टीचर सदगुरु है प्रजापिता।
प्रजापिता को समझाएगा? प्रजापिता के द्वारा तो खुद ही बोलता है, मुकर्रर रथ के रूप में बोलता है, मुकर्रर रथ के रूप में समझाता है। किसको? इसको कि वो सुप्रीम बाप भी है इस सृष्टि में, सुप्रीम टीचर भी है। माना इस साकार सृष्टि में उसको जन्म देने वाला कोई बाप नहीं है, और उसको सारी सृष्टि में समझाने वाला भी कोई नहीं है। जो गाते भी हैं, शिक्षक हो सिगरे जग को ये ताकों कहा बदेती है शिक्षा, कौन सी आत्मा बोलती है? है, है? प्रजापिता वाली आत्मा बोलती है। ये तो इस दुनिया की बात है, जो शास्त्रों में गाई हुई है, कवियों ने गाई हुई है, लेकिन है वास्तव में संगम युग की बात। जिसका नाम कवि ने सुदामा रख दिया। सु माने सुंदर, दाम माने है धन संपत्ति, वेद की धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति। तो ज्ञान की धन संपत्ति वाला उस जन्म में जो सबसे गरीब बन गया वो गरीब की बात बोली, और उसको समझाना पड़ेगा कि वो कौन है जिसके लिए गरीब निवाज गाया हुआ है। साहूकार निवाज नहीं, कौन गाया हुआ है? 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 चक्कर में पड़ जाते, क्या बात है। अरे गरीब निवाज कौन गाया हुआ है?
शिव बाबा।
है?
शिव बाबा।
शिव बाबा है? ब्रह्मा सुदामा, वो खुद ही गरीब है, वो क्या गरीब निवाज बनेगा? है शिव बाप, जो अकूट ज्ञान का भंडार है वो शिव बाप गरीब ते गरीब को देता है। क्यों गरीब बन गया है? क्योंकि इस झूठ खंड की दुनिया में, द्वैतवादी दुनिया में आकर उसे झूठ खंड से जन्म जन्मांतर टकराना पड़ता है, युद्ध करने पड़ते हैं। तो युद्ध करने में घाव भी लगते हैं ना, है? घायल भी होता है ना, भले बहुतों को घायल भी करता होगा लेकिन खुद भी तो घायल होता है। तो खून बहता है या नहीं बहता है? ज्यादा खून बह जाता है तो कमजोर हो जाता है ना, नहीं होता? होता है। वो है देह अभिमानी दुनिया का खून, देह का खून, और यहाँ ब्रॉड ड्रामा की जो शूटिंग होती है उस शूटिंग पीरियड संगम युग में कौन से खून की बात है? आत्मा का, संकल्पों का खून है। जो खून सारी दुनिया से टकराता है, क्योंकि सारी दुनिया झूठ खंड बन जाती है। ऐसा भी होता है शूटिंग पीरियड में बार बार होता है, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। तो सारी दुनिया से टक्कर लेनी पड़ती है। ब्रह्म वाक्य भी है मुरली में, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन भूल गए पाप को नहीं भूलना, ये नहीं कहा बाबा को नहीं भूलना, क्या कहा? बाप को नहीं भूलना। तो किसको भूलने की बात है? हैं? अभी शिव बाबा हो गया, शिव बाप को नहीं भूलना। अरे भूलना और याद करना किसके लिए बताया है? साकार को याद करना, वो तो साकार में से निराकार शिव को निकाल दो वो तो मुर्दा बन जाएगा। मुर्दे को याद करना है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, दोनों का जो कम्बिनेशन है उसको नहीं भूलना। लेकिन ये बात बताई सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के लिए, लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके लिए क्या बताया कि सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाप को नहीं भूलना। माना ज्योतिबिंदु निराकार को नहीं भूलना, एक के लिए ऐसे क्यों बोला है?
क्योंकि उसका साकार में कोई बाप नहीं है।
संगम युग में जब से बाप की पहचान होती है तब से लेकर जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है उसका कोई बाप नहीं। बाप माने वर्षा, एक ही बाप है जिससे क्या वर्षा मिलता है, ज्ञान का वर्षा मिलता है, सामान्य ज्ञान का वर्षा मिलता है, अकूट ज्ञान के भंडार का वर्षा मिलता है, अकूट ज्ञान के भंडार का वर्षा मिलता है, धन संपत्ति का वर्षा नहीं मिलता, मैलमाणियों अटारियों का वर्षा नहीं मिलता, मल्टी मिलियनर कारखानों का वर्षा नहीं मिलता, देह के पोषण के लिए कोई भी स्थूल चीज का वर्षा नहीं मिलता। क्या मिलता है? ज्ञान का वर्षा मिलता है। निराकार आत्मा को क्या चाहिए है? निराकार को निराकारी ज्ञान चाहिए, निराकार का बाप निराकार और निराकार का वर्षा निराकारी ज्ञान। तो बताया कि वो निराकारी बाप जिसका कोई बाप नहीं वो अपने बड़े से बड़े बच्चे को क्या वर्षा देता है? हैं? बड़े से बड़ा वर्षा देता है, जिस वर्षे का मुकाबला कोई बाप नहीं कर सकता, कोई बच्चा नहीं ले सकता, ऐसा वर्षा देता है। लेकिन निराकार वर्षा है, साकार वर्षा नहीं है। निराकारी बाप का निराकारी ज्ञान का वर्षा। ये परंपरा चली आ रही है, हिस्ट्री उठा के देख लो, यथा राजाओं तथा प्रजा ने अपने बड़े बच्चे को वर्षा दिया, ये परंपरा कहां से चली, किसने चलाई है? शिव बाप ने चलाई। ये अच्छे से अच्छी परंपरा है क्या है? कैसे अच्छे से अच्छी परंपरा इसलिए है कि बाप का जो बड़ा बच्चा होता है वो लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पैदा होता है, और बाद वाले बच्चे उतने लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पैदा नहीं होते, और दुनियावी प्योरिटी तो देह की प्योरिटी है। देह की पवित्रता, देह विनाशी है तो देह की जो पवित्रता है वो भी विनाशी कहें या अविनाशी कहें? क्यों है? देह के हिसाब से इस सारी दुनिया के बीच जरूर कोई ऐसी आत्मा होगी जो अव्वल नंबर का देह की प्योरिटी का वर्षा प्राप्त करती होगी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का वर्षा प्राप्त करती होगी। कोई नहीं याद रही है? कौन?
नारायण।
अरे वो तो नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, ज्ञान के जल में रहने वाला है वो, कोई देह की बात है क्या है? ज्ञान देह में रहता है, देहबान में, वो तो आत्मा की चीज है। उस आत्मा का नाम बताओ जो देह का जो प्राप्ति है, देह के वर्षे की प्राप्ति सबसे जास्ती पाती है, लक्ष्मी। उसने क्या किया? जो देह का सबसे जास्ती सुख पाती है जन्म जन्मांतर, सिर्फ याद किया है, मन बुद्धि से सिर्फ याद किया, देह से संबंध एक के साथ नहीं जोड़ा है, है? ये तो कहते हैं याद किया,
एक के साथ जन्मांतर संबंध
है,
एक के साथ।
हाँ, याद आप विचारी तभी आएगी जब एक के साथ देह और देह की इंद्रियों का संबंध संपर्क जुड़े, संसर्ग जुड़े। अगर कोई और के साथ संबंध जोड़ा तो रिजल्ट क्या होगा? उसकी याद भी आने लगेगी, तो व्यभिचारी याद हो जाएगी या अव्यभिचारी याद रहेगी? ऊंचे ते ऊंची याद रहेगी या नीचे याद हो गई? तो वो देह की बात है, देह का वर्षा प्राप्त किया, उसे ज्ञान का वर्षा नहीं मिला ऊंचे ते ऊंचा। और देह का वर्षा किससे मिलता है? जो ऊंचे ते ऊंचा षष्ठ रूपी रंगमंच पर देह का वर्षा देने वाला कौन? देहधारी ही होगा। देहधारियों में सबसे ऊंचा हीरो पार्ट बजाने वाला ही होगा। सिर्फ निराकारी है क्या कि सिर्फ साकारी है? क्या है? है तो साकारी। निराकारी स्टेज धारण करता है, कौन से बल का आधार लेता है? है योग बल का आधार लेता है। और अच्छे ते अच्छा योग बल प्राप्त हो, योग माने याद, अच्छे ते अच्छी याद हो, उसका आधार क्या? ज्ञान। ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान धारण किया तो ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? है ऊंचे ते ऊंचा वर्षा है विश्व की बात सही। विश्व धर्मों के ऊपर बात सही। जो सारा विश्व कभी एक तरफ हो जाता और वो आत्मा एक तरफ रह जाती अकेली, कोई साथी नहीं रहता, साथ देने वाला, क्यों? क्योंकि षष्ठ रूपी रंगमंच पर शूटिंग पीरियड में जिसने सहनशील माता का बड़े ते बड़ा पार्ट बजाया, कौन? वो माता ही धोखा दे जाती। वो आत्मा ही धोखाबाजी निकली। साकार मनुष्य सृष्टि के बाप ने संगम युग में पहली बार जिस आत्मा को अपना दिल तख्त दे दिया, अकेले ने दिया या साथी ने भी दिया है? अरे यज्ञ के आदि में मनुष्य सृष्टि के बाप का कोई साथी था या नहीं था? हैं? था कौन है? अरे वो तो निराकार है, साकार साथियों की बात हो रही है। ब्रह्मा बाबा साथी था उस समय है, उसने संबंध को पहचाना तो साथी कहां से हो गया? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता कहो आदम कहो, उसका संगम युगी शूटिंग काल में आदि काल में कोई साथी था जीवन साथी या नहीं था? हैं? जगदम्बा साथी थी है? कौन था? जो बहुत विरोध भी नहीं करती और पुरुषार्थी जीवन में बहुत लगाव पूर्वक भी नहीं रहती, रहती है? है? नहीं रहती। तो शिव बाप की त्रिमूर्ति में तीन मूर्तियां हैं, एक लव फुल, एक ला फुल, एक बहुत ही प्यार की ममतामयी मूर्ति मां, और दूसरा एकदम लव फुल जो साक्षात्कार से बनाए हुए त्रिमूर्ति के चित्र में स्ट्रिक्ट बैठा हुआ है, एकदम लव फुल। तो क्या संसार एकदम लव फुल या एकदम लाफुल होने से चल सकता है? हैं? नहीं चल सकता, बैलेंस चाहिए। तो बैलेंस वाली मूर्ति कौन सी है? हैं? विष्णु। बैलेंस वाली मूर्ति तो है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बैलेंस वाली मूर्ति एकदम जो लाफुल प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली आत्मा है। उससे मिलकर ही नहीं चलती, कौन है? कौन है प्रैक्टिकल लाफुल?
रामबली आत्मा
रट लिया। शंकर बाबा तो कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल कहां से हो गया? प्रैक्टिकल तो कर्म इंद्रियों के द्वारा होता है।
प्रजापिता।
अरे प्रजापिता बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं। अरे शंकर जब कुछ करता ही नहीं है कर्म इंद्रियों से तो प्रैक्टिकल में लाफुल कैसे हो गया? प्रैक्टिकल में तो शरीर चाहिए, शरीर की इंद्रियां चाहिए, वो तो मोस्टली याद में बैठा हुआ है।
ब्रह्मा बाबा
वो लाफुल बन जाता है। बड़े बड़े धुरंधर बैठ गए।
जगदम्बा।
हाँ ये नहीं तो वो नहीं तो ये, नंबर हमारा आगे हो जाना चाहिए। तो असुर संहारिणी शक्तियां गाई हुई हैं, उनमें कोई मुखिया होगी या नहीं होगी? है शिव शक्तियों में, माताओं में कोई मुखिया भी होगी? कौन हुई मुखिया? है जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली। तो जो महाकाली है आत्मिक रूप में जगदम्बा का हो, वो महाकाली बैलेंस रखने वाली है क्या? है लव और ला का है कि टोटल ला फुल है? सारी दुनिया जो एक तरफ हो जाती है झूठ की तरफ या सच्चाई की तरफ, झूठ की तरफ हो जाती है, उन सब झूठों का कत्लेआम कर देती है। क्या चित्र क्या दिखाते हैं? चरित्र की यादगार चित्र दिखाते हैं। खांडे से सब असुरों का गला काट देती, गला ही क्यों काट देती, नाक काट लेती है? नाक क्यों नहीं काटती? क्योंकि वो लंबी जीव वाली है। जीव कैसी है? माना बहुत बोलने वाली है। मेरे सामने कोई कुछ भी बोल नहीं सकता। और आवाज कहां से निकलती है? गले से निकलती है। तो सबके गले काट देती है, अपने सामने किसी को नहीं बोलने देगी। इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा कहे जाने वाला धर्म पिताओं से ही सही, ग्रेट फादर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इतना तीक्ष्ण बोलती है, और पता है कौन सा यादगार दुनिया में ऐसा इबादत स्थल है, इबादत का स्थान कहा जाता है जहां की वाणी बड़ी प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। हर समय वहां वाणी चलती रहती है। उस गुरुद्वारे की देवी का नाम क्या हुआ? वाक देवी। वाक माने वाणी। तो वाचा के आधार पर ही दिखाते हैं, और कर्मेंद्रियों की कर्मणा के आधार पर ही दिखाते हैं कि सबका गला काट देती। तो बड़े ते बड़ी विनाशकारी आत्मा प्रैक्टिकल में विनाश का पार्ट बजाने वाली कौन हुई? है महाकाली। इतनी भयंकर कि उसके सन्मुख वाचा से, कर्मणा से भी कर्म इंद्रियों की कर्मणा से भी संसार की कोई मनुष्य आत्मा एक को छोड़कर, तो वो तो महाकाली है, महाकाली अकेली है या उसके साथ तो कोई और भी है? महाकाल। भक्त लोग गाते हैं जय माता दी, बार बार बोलते हैं जय माता दी। पिता दी याद रहता है? है? नहीं याद रहता? क्यों? क्योंकि देखने में आता नहीं, और चित्रों में अगर देखने में आता है तो चित्र तो चरित्र की यादगारें हैं। वो महाकाली ने कैसा चरित्र बजाया जो भक्तों की बुद्धि में महाकाली संसार में सर्वोपरि दिखाई पड़ती है। क्या चरित्र है चित्रों में है? अरे चित्र ही भूल गई। हाँ, जो जगत पिता कहा जाता है उस जगत पिता की छाती पर भी पांव रख देती है, और जगत पिता कुछ भी नहीं बोलता। क्यों?
जगत पिता का काम कर रहे
हैं। हाँ, कहते हैं दूध देने वाली गाय जिसके दूध में खूब घी निकलता है, अगर लात भी फटकारती है तो सहन करते हैं या नहीं सहन करते हैं? हैं? तो यही बात है। शंकर जी तो निठल्ले, कुछ काम धंधा तो है नहीं, ऐसे होता है ना दुनिया में? पति बैठा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं, उसका सारा काम धाम पत्नी संभालती है, तो उस पत्नी का क्रोध भी सहन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है? करना पड़े। तो बेचारे को लात मार देती है और बड़े आराम से मसट साध के ऐसे पड़े रहते हैं जैसे नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। तो देखो ये काम करने वाली आत्मा महाविनाश का प्रैक्टिकल अंजाम देने वाली आत्मा देखने में कौन आती है? महाकाली देखने में आती है, लेकिन उसकी बुद्धि को चलाने वाली आत्मा उसके मस्तक पर बैठी हुई है, है? माया बैठी, एक से एक ज्ञानी बैठे हुए हैं, शंकर बैठा हुआ, वाह भैया,
अधूरा चंद्रमा।
हाँ, ज्ञान चंद्रमा, और वो भी अधूरा। नीमकी में खतरे जान कहते हैं ना, किसी ने डॉक्टरी का वैद्य का अधूरा ज्ञान ले लिया और लोगों का इलाज करने लगा तो दो चार छह को मार देगा कि नहीं मार देगा? मार देगा। तो वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल जो शरीर से नामधारी महाकाली कही जाती है, उसके शरीर से काम लेने वाला कौन है? महाकाली। अरे रुद्रमाला का मणका है ना, रुद्रमाला का आखिरी मणका है या नहीं है? जगत पिता के साथ जगदम्बा नहीं है? है। तो रुद्रमाला की यादगार जो मणके हैं उनको रुद्राक्ष कहा जाता है। अक्ष माने आंख, रुद्राक्ष माने रुद्र की आंखें। तो आंखें भी शरीर का अंग है, सारी देह महाकाली, शरीर रूप में तो महाकाली है क्योंकि देहधारी का ही नाम पड़ता है, नाम देह का पड़ता है या आत्मा का पड़ता है? देह का पड़ता है। लेकिन वास्तव में उसके अंदर काम कराने वाली वो आत्मा कौन है? है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। लेकिन अधूरा संपूर्ण नहीं, और वो अधूरा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उस महाकाली के शरीर को पूरा ही कंट्रोल कर लेता है। रुद्राक्ष में मणके होते हैं ना, है? जो मणके होते हैं उनमें मुख बने होते हैं, कोई विरला मणका जिसका एक मुख, नहीं तो दो चार आठ पांच ज्यादा मुख भी होते हैं। ये मुख किस बात की यादगार है? मुख किस बात की यादगार? अरे मुख बनाते हैं चित्र में तो ऐसा लाइन खींचते हैं कि नहीं? मुख यादगार है, मुख लेने की यादगार। मुख से ऐसी जबरदस्त तीखी भाषा उच्चारण करती है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सिवाय है, सिवाय रुद्रमाला का जो मुखिया है जगत पिता, जिसके नाम से अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है, ज्ञान यज्ञ का नाम क्या? अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ है। रुद्र यज्ञ क्यों? ब्रह्मा यज्ञ नहीं, विष्णु यज्ञ नहीं, शंकर यज्ञ नहीं, अरे और तो और, इन तीन मूर्तियों का जो रचयिता है शिव, उसका भी नाम नदारद। शिव यज्ञ कहते वो भी नहीं, क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है। और सिर्फ रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं है, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो जब यज्ञ ही अविनाशी है तो उसका रचयिता है वो भी अविनाशी होगा या अविनाशी होगा? वो भी अविनाशी। अविनाशी पार्ट बजाने का मतलब क्या है? है
निश्चय अनिश्चय
हाँ। अविनाशी का मतलब इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऐसी अविनाशी पार्ट बजाने वाली आत्मा जिसके पार्ट का कभी भूत भविष्य वर्तमान कभी भी विनाश नहीं होता, एक ही आत्मा है, पार्टधारी जिसके पार्ट का विनाश तीनों कालों में कभी भी नहीं होता, इसलिए उसको कालों का काल महाकाल ऐसे पुकारते हैं। शिव बाप इस षष्ठी पर आते हैं, आत्माओं का बाप, तो त्रिकालदर्शी बनकर आते हैं, या तीनों कालों में से कुछ कम कर दिया जाए ऐसा अपूर्ण ज्ञान लेकर आते हैं, है संपूर्ण त्रिकालदर्शी। तीनों काल का दर्शन करने वाला अगर शिव बाप अब्राहिम की आत्मा, इस्लाम धर्म का प्रणेता या उसका आधार मूर्त मनुष्य सृष्टि वृक्ष में उसकी आधार रूपा जड़ हो, या उस जड़ को भी उत्पन्न करने वाला बीज हो, तो इनमें से कोई आत्मा को शिव बाप की आत्मा ध्यान से नहीं देखती। क्यों है? कोई कारण है या नहीं है? है? क्योंकि इब्राहिम जिस आधार मूर्त नारायण में प्रवेश करता है और उस आधार मूर्त जड़ स्वरूप नारायण को जो जन्म देने वाला बीज है, इनमें कोई भी आत्मा तीनों काल का चक्कर लगाने वाली नहीं है। चलो, ये तो द्वैतवादी दुनिया की बात का मुखिया है इस्लाम धर्म। चंद्रवंश में आ जाओ, चंद्रवंश का मुखिया कौन है? चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से रोशनी लेता है। तो चंद्रमा भी इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? पूरा तीनों काल का पार्ट है?
50 साल कम हो जाते
हैं।
50 साल कम हो जाते
हैं। हाँ, जिसको टाइटल मिला ज्ञान चंद्रमा और जिसको रोशनी मिलती है सूर्य से, स्वयं प्रकाशवान नहीं बनता। 16 कला संपूर्ण भी बन जाएगा तो भी स्वयं प्रकाशित नहीं होता। तो इस सृष्टि पर सदा प्रकाशित होने वाली आत्मा कौन है? ज्ञान सूर्य। सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा प्रकाशित होने वाली है लेकिन हीरो पार्टदारी तो है। रंगमंच पर आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाली है लेकिन हीरो पार्टधारी उस हीरा को देह अभिमान की धूल जकड़ती है या नहीं जकड़ती है? जकड़ती है। देह अभिमान की धूल जकड़ती है तो हीरे में जो सत्य की रोशनी है उसे कोई देख सकता है? है? नहीं देख सकता। वैल्यूलेस समझ में आता है। सच रूपी रंगमंच पर जैसे और साधारण आत्माएं हैं, सर्वसाधारण पार्ट बजाने वाले, उनमें भी साधारण देखने में आता है। जो गीता में बोला भगवान ने कि मुझे भगवान को साधारण तन में आए हुए को मूढ़मति मनुष्य नहीं पहचान पाते। तो कौन पहचानता है? इस मनुष्य सृष्टि में साधारण तन में आए हुए बापों के बाप को सुप्रीम गॉड फादर को मूढ़मति नहीं पहचान पाते। तो कोई तो पहचानते होंगे है? बच्चे पहचानते। यज्ञ के आदि में क्या हाल हुआ था है? यज्ञ के आदि में सारी दुनिया एक ओर और एक आत्मा दूसरी ओर, तो क्या वहां उस ब्राह्मणों की दुनिया ओम मंडली में बच्चे नहीं थे? थे। तो कोई ने पहचाना है? पहचाना है? अरे यज्ञ के आदि में ओम मंडली सदाकाल चलती रही या मंडली बिखर गई? तो कोई ने पहचाना क्या? क्या कहें है? कोई ने नहीं पहचाना। फिर शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की दूसरी बार सृष्टि रची। यज्ञ की हिस्ट्री भी यही बताती है कि 1947 में ओम मंडली का नाम निशान खत्म हो चुका था। कौन सा ब्राह्मणों के संगठन की नई दुनिया तैयार हुई? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और वो ब्राह्मणों का संगठन भी ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद वैसे ही विघटित तो होने लगा जैसे इस दुनिया में अलग अलग धर्मों के धर्म पिताएं आए, तब तक उत्थान होता रहा। और उन धर्म पिताओं ने जब शरीर छोड़ दिया तो उनके फॉलोअर्स ने धर्म का विघटन करना शुरू कर दिया। 18 जनवरी 1969 को शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा के भी जो बड़े बड़े फॉलोअर धुरंधर माने जाते थे, वो ब्रॉड ड्रामा में जैसे ही द्वैतवाद शुरू होता है अपना अपना प्रावंश अलग अलग कर लेते हैं, राज्य अलग अलग कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। ऐसे ही 69 में ही शरीर छोड़ा ब्रह्मा ने, और उनहत्तर में ही अपने अपने प्राविंस का बंटवारा हो गया। कोई गुजरात जोन की इंचार्ज बने, कोई यूपी की इंचार्ज बने, कोई कर्नाटक की इंचार्ज बने, सारे भारत में बंटवारा हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन का बंटवारा। और ब्रह्म वाक्य मुरली में तो पहले ही बाबा ने इशारा दे दिया था, 66 में ही बता दिया, 10 वर्ष में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। उस नई दुनिया में जो मनुष्य सृष्टि का बाप नर रूप में पार्ट बजाने वाले जो मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया के, उनके बीच ऐसे नर का पार्टधारी जिसके पार्ट की प्रत्यक्षता 10 वर्ष में हो जाती है, इसलिए बोल दिया 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा ही, साथ साथ लक्ष्मी नारायण का जन्म भी बता दिया। वाक्य याद है इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो हिसाब लगाने से कितना आता है? 76 आता है। तो 76 में वो नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाली आत्मा षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने लगी। पहले स्वयं के अंदर प्रत्यक्षता होगी, लक्ष्मी नारायण साथ साथ जन्म लेते हैं तो साथी को प्रत्यक्षता होगी या सबको प्रत्यक्षता हो जाएगी? है साथी को प्रत्यक्षता होगी या स्वयं को प्रत्यक्षता होगी? इसलिए पहले ही इशारा दे दिया व्यक्तवाणी में कि बाप दादा किसी का पार्ट कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे, बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे, हरेक आत्मा को अपने पार्ट की प्रत्यक्षता स्वयं ही होगी, स्वयं ही अपनी वाचा से अपने कर्मों से अपनी दृष्टि से वृत्ति वाइब्रेशन से अपने पार्ट को हर आत्मा प्रत्यक्ष करेगी। न बाप प्रत्यक्ष करेगा न कोई दूसरा प्रत्यक्ष करेगा, अपने ही मुख से अपने पार्ट की प्रत्यक्षता करेंगे। या ऐसे समझ लो करावनहार बाप करावेगा, तो साबित हो जाता है कि ब्राह्मणों की दुनिया का जो दूसरा संगठन सन 47 में बना था उसका विघटन कब हो गया? 76 में। और ये भी बता दिया कि टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। किस बात में टू लेट? कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना, ये जो फर्स्ट क्लास लक्ष्य है इसके लिए सन 76 के बाद पुरुषार्थियों ब्राह्मणों की दुनिया में टू लेट का बोर्ड लग जाए। माने कोई फिर कितना भी पुरुषार्थ करे ब्राह्मणों की दुनिया में कितना भी नाम वाला होता रहे लेकिन नर से डायरेक्ट नारायण उसी जीवन में और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी उसी जीवन में कोई भी ब्राह्मण पुरुषार्थी नहीं बन पाएगा। टू लेट हो गया पुरुषार्थ के लिए बताया। तो क्या साबित हुआ? कि जो बोला है ब्रह्मा सो विष्णु और ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों का नाम है? चतुर्मुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, पंचमुखी ब्रह्मा गाया हुआ है, तो एक ब्रह्मा की बात तो नहीं है। और नंबर वार होंगे या नहीं होंगे? है नंबर वार होंगे। कोई अब्बल नंबर ब्रह्मा, कोई द्वयम नंबर, कोई तीसरा नंबर, कोई चौथा नंबर, कोई पांचवा नंबर। तो जो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है अब्बल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ फिर? है शिव निराकार ज्योति बिंदु बापों का भी बाप। आत्माओं का बाप जिसको कहें पुरुष या स्त्री। पुरुष कहें क्योंकि पुरुष माने कठोर, स्त्री पुरुष के बीच में तन से मन से बुद्धि से किसी भी प्रकार से ज्यादा कठोरता पुरुष में होती है मोस्टली या स्त्री जाति में होती है? पुरुष में। तो आत्मिक रूप में स्थिर होने वाली जो भी आत्माएं पार्टधारी हैं उनमें परम पुरुष कोई होगा या नहीं होगा? है वो परम पुरुष कौन? शिव बाप, जिसे कहते हैं बापों का बाप। परिवार में भी संता सनातन परंपरा यही चली आ रही है कि कोई भी परिवार में जो सबसे जास्ती ओल्ड होता है उसका मान मर्तबा सबसे जास्ती रखा जाता है। अभी भी देखो गवर्नमेंट में ये नियम निकला, पहले नहीं था क्या है? हाँ क्या, जोर से बोलो। सीनियर सिटीजन, क्योंकि बाप आते हैं तो बाप के वाइब्रेशन कुछ न कुछ गवर्नमेंट में भी पकड़ में आ जाते हैं। जैसे पहले 76 से पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी और बाप प्रत्यक्ष हुआ, मनुष्य सृष्टि का बाप, वो पुरुषार्थी जीवन में तो शिव नहीं होता, सारी सृष्टि का कल्याणकारी होता है नहीं होता? पर जब पुरुषार्थ संपन्न होता है तो जो बाप का विरुद्ध है शिव बाप का, कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा, जैसे मैं अखूट भंडार ज्ञान का, वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार अखूट ज्ञान का भंडार बनाता हूं। ये बात सत्य है क्या है? बच्चों को बनाता है या एक को बनाता है?
एक को बनाता
है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है, वो अपनी दुनिया के अंदर अपने धर्म के दायरे में उन सितारों की अपनी दुनिया नहीं है, है? तो वो सितारे अपनी दुनिया के दायरे में अखूट भंडार वाले हैं या नहीं है? लेकिन नंबर वार या एक जैसे कहेंगे नंबर वार, तो अब्बल नंबर भी कोई होगा। तो जो अब्बल नंबर है मनुष्य सृष्टि का बाप, हीरो पार्टधारी, वो एक आत्मा है। जो ऑलराउंड पार्ट बजाती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर और उसी को सत्य बाप का सत्य बच्चा कहेंगे। क्यों? क्या सत्य की शक्ति उसे एक में ही आती है? है चंद्रवंश के मुखिया में नहीं आती? इस्लाम, बौद्ध या क्रिश्चियन धर्म के मुखिया में नहीं आती?
नहीं
आती है, नहीं आती। अपने अपने टाइम पर वो जो ज्ञान सुनाते हैं वो समय चक्र के अनुसार तो सत्य है, परंतु 100% सत्य नहीं कहेंगे, क्योंकि गीता में ही बोला है इस संसार में जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। किसका विनाश होता है? झूठ का विनाश होता है, सत्य का विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। सत्य सदा अजेय है, इसलिए शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि इस मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा का गायन है जिसकी युद्धों में कभी हार नहीं हुई, नारायण। और सभी आत्माएं मात खा जाती हैं। तो आधार क्या है? सदा विजयी होने का आधार क्या हुआ? है जो शास्त्रों में विषपाई गाया हुआ है, विष पीने वाला, और विष की परिभाषा भी बताई है, पराई स्त्री, पर पुरुष का इंद्रियों से संग लेकर सुख भोगने वाला, वो विषयी विकारी है, विविचारी है, विषपाई है या नहीं है? विषयस वैश्य है या नहीं है? अव्वल नंबर का विषयस तो उसी को कहें। तो जो विषयस है महाविकारी है, वो सदा काल का सत्य कैसे हो सकता? हो सकता है, है? अरे सदा सत्य हो सकता है या नहीं हो सकता? बड़ा भारी प्रश्न आ गया।
याद में रहकर मुक्ति,
याद में रहकर सदा सत्य हो सकता है? अरे विष पाई है तो अनेकों का संग करता है, विविचारी है, इंद्रियों के द्वारा, तो जिनका संग करती है आत्मा, तो आत्मा को संग का रंग नहीं लगता? जब संग का रंग लगता है तो आत्मा कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? तो जो विषपाई है वो सदा सत्य कैसे हो सकता? जो सत्य इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति बताई है, और घर घर में भारतवर्ष में कथा भी होती है, किसकी? सत्यनारायण की कथा होती है। परंतु जैसे इस दुनिया का हिसाब है, दुनिया की हर वस्तु का, हर चीज का, हर व्यक्ति का हिसाब है कि चार अवस्थाओं से जरूर पसार होती है, शुरुआत में सतोप्रधान और अंत में तमोप्रधान। तो जरूर कोई आत्मा भी ऐसी है जो सृष्टि के आदि में एकदम सात्विक और सबसे जास्ती सात्विक पार्ट बजाने वाली और जब षष्ठी चक्कर खाते खाते त्रेता युग में आती है जहां क्षत्रिय वर्ण वो धरता है उस क्षत्रिय वर्ण में भी अब्बल नंबर का क्षत्रिय ऐसे ही द्वापर के आदि में अब्बल नंबर का है वैश्य विशेष पहला विशेष या दूसरे तीसरे चौथे नंबर और बाद वाले नंबर पहला विशेष कैसे अरे
जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता
वो तो रटा हुआ है है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य सो पहला शूद्र सो पहला ब्राह्मण ये तो रटा हुआ है लेकिन पहला वैश्य विशेष कैसे अव्वल नंबर का कोई प्रश्न करेगा तो क्या जवाब देंगे
द्वापर से
पहले नंबर में देवान आता है किस में आता है देवान इब्राहिम में नहीं आता मनुष्य सृष्टि के बीज में आता है क्या है? आता है अरे आगे चल के देश विदेश के लोग आएंगे अलग अलग धर्मों के तीक्ष्ण बुद्धिवादी वो पूछेंगे क्या जवाब देंगे वो बोलेंगे ऐसे ही बकबक करते रहते हीरो पाटधारी है बाबा
बाबा को आगे
आगे बाबा को करेंगे बाबा हर समय पकड़ में आएंगे है तो कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता और अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है जहां बीज रूप आत्माएं हैं और आधार मूर्त आत्माएं हैं अभी तो दुनिया के बड़े बड़े संगठन तो यज्ञ कुंड में कूदे ही नहीं है, है? कूद गए बड़े बड़े संगठन पड़े हुए हैं बड़े बड़े धर्माधीश धर्म सत्ताधीश जिनके इशारे पर बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं नहीं समझ में आया ऐसा भी खलीफा बैठा हुआ है उसका एक इशारा होता है और अमेरिका की वो ऊंचे से ऊंची बिल्डिंग जहां से दुनिया का कंट्रोल होता है वो धराशायी हो जाती। इतने बड़े भयंकर धर्म सत्ताधीश जिनके इशारों पर राज्य सत्ताधीश बनते हैं, इंडिया में ही देख लो बड़े बड़े मिनिस्टर्स भारत में जो बड़े बड़े धर्माधीश सत्ताधीश शंकराचार्य कहे जाते हैं उनके पांव पर जाकर लूटते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, उनके इशारों पर चलते हैं। नहीं है? चलते हैं। अभी वो बड़े बड़े धर्म सत्ताधीशों के गुट और बड़े बड़े धर्माधीश धर्माचार्यों के गुट वो तो अभी इस अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ के बारे में कुछ भी जानते ही नहीं। हाँ, आज से 2500 वर्ष पहले जब से द्वैतवादी धर्म पिताएं आए, दो दो धर्म दो दो राज्य आरंभ हुए, तब से भारतवर्ष के रहवासी कुछ आत्माएं हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। जो पहले सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे सतयुग त्रेता में, ज्ञान सूर्य की औलाद थे और ज्ञान चंद्रमा की औलाद थे, परंतु वो सब मूल रूप में किससे जन्म लेते हैं? सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी हो। अरे है? अरे पिता माने पुरुष, पुरुष जन्म देता है, जन्म देना माने संसार में प्रत्यक्ष करना। पिता जन्म देता है, अरे मनुष्यों में जानवरों में कोई जानवर ऐसा है मेल जो बच्चों को जन्म देता हो? जन्म देना माने संसार में प्रत्यक्ष करना, प्रत्यक्षता रूपी जन्म देना। 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो कौन से प्रत्यक्षता वर्ष की बात है? अरे आत्मा के प्रत्यक्ष होने की बात है या देह रूपी बच्चे के प्रत्यक्ष होने की बात है? है देह रूपी बच्चे के प्रत्यक्ष होने की बात है। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हुई है। 76 में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनके बीच में सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन, बीज कौन, ये नहीं प्रत्यक्ष हुआ है? हुआ। तो आत्मा ने जन्म नहीं लिया है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो जन्म माने क्या? जन्म माने संसार में प्रत्यक्षता हो, सारा संसार जानने लगे, जो देखे जो सुने तो जाने कि हाँ उमा उमा की आवाज पड़ोस से आ रही है, बच्चे ने जन्म ले लिया, प्रत्यक्ष हो गया। फिर जो देखे देखे तो मानेगा आ या नहीं मानेगा? मानेगा। ऐसे ही इस षट रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच जो सुप्रीम सोल है वो भी जन्म लेता है। क्या निशानी? अभ्यक्त वाणी में बताइए। अरे भूल गए, जो देखे इन आंखों से, स्थूल आंखों से, जो सुने दो शब्द भी इन कानों से, उसको पक्का निश्चय हो जाए कि मेरा सुप्रीम सोल गॉडफादर इस सृष्टि पर आ गया। सन्मुख होई जीव मोई जवहें, जन्म कोटि अघनाशय तवहें। क्या? जीवात्मा वो कहता है, कौन कहता है? वो कहता है, या उसका 100% साकार स्वरूप कहता है। क्या कहता है? सन्मुख होय जीव मोय जब ही, जीवात्मा जब मेरे सन्मुख हो जाए, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख। ये क्या होता है? बाहर से तो देखने में आए ऐसी बातें करता है, बड़ी लल्लो चुप्पो मक्खनबाजी कर रहा है, तो कोई समझे इसने तो बहुत अच्छा पहचान लिया, जान लिया, समझ लिया, मान लिया, लेकिन अंदर में खार खाए बैठा है, विपरीत संकल्प चलते हैं। क्या? मुख में राम, बगल में दिखाई न पड़े, एकांत मिल जाए अकेला तो मैं इसको कच्च कर दूं। ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी हैं या इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने स्टाम्प पेपर पर कोर्ट के सामने शपथ पत्र लिखा और जब सात्विक स्टेज थी तो बड़ी मक्खनबाजी करते थे, फिर अभी क्या हालत है? हाँ, अभी अकेले में मिल जाए तो बस खेल खलास कर दूं, क्योंकि विष्णु पार्टधारी तो मैं ही हूं। इस दुनिया में जो ऊंचे से ऊंचा परम पद गाया हुआ है गीता में भी, परम पद क्या है? विष्णु, वो तो मेरा ही पार्ट है, ये तो झूठा है। इस झूठे को खत्म कर दो बस, फिर तो वल्ल ही वल्ला। तो ऐसे ऐसे भी हैं, अंदर से सन्मुख नहीं है, बाहर से सन्मुख है, विमुख नहीं दिखाई देते, लेकिन नहीं, अंदर से भी सन्मुख और बाहर से भी सन्मुख, कोई रूप में विमुख ना साबित हो, ऐसी जीवात्माएं, और जीवात्माएं तो अनेक हैं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब क्या हैं, जीवात्मा हैं, लेकिन उनको तो मन बुद्धि है ही नहीं, मन बुद्धि सिर्फ मनुष्य को होती है, इसलिए मनुष्यों की बात है, मनुष्यों के लिए ये बोला किसने है, वो ऊंचे ते ऊंची आत्मा जिसके पास ऊंचे ते ऊंची पावर है, कौन सी पावर, ज्ञान की कहो सत्य की कहो, सत्य को ही ज्ञान कहेंगे या झूठ को ज्ञान कहेंगे, सत्यता की अखूट पावर है, और सत्य क्या है, वो सत्य कौन है इस संसार में, जो अखूट सत्य है इस संसार में, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे इस संसार में, शिव बाप अखूट सत्य है, है इस सृष्टि पर, फिर शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, शिव बाप सदा कायम नहीं है, जो सदा कायम है सृष्टि पर तीनों काल में कायम है, वो ही सदा सत्य है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक या कोई भी मनुष्य आत्मा है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम नहीं रहती क्या है, नहीं रहती, क्यों,
द्वैतवादी युग में आते
हैं,
द्वैतवादी युग में आते,
हाँ द्वैतवादी, चलो द्वापर युग से आते हैं, वो तो आधे कल्प सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं रहते, लेकिन जो पहले ही आ गए द्वापर युग आरंभ होने से पहले ही आ जाते हैं, उनको न कहे है, वो सत्य नहीं है, अरे सदाकाल सत्य है या नहीं है, क्यों, क्योंकि उनकी आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वो पूरा तीनों काल का रिकॉर्ड है ही नहीं, तो जब तीनों काल का रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि कोई त्रेता के आदमी आ जाए भले, कोई एकदम ठेठ सतयुग के आदमी आ जाए, मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता पत्ती बन जाए, तो क्या सत्य नहीं है, अरे वृक्ष का जो पत्ता है वो सदाकाल होता है या विनाश हो जाता है, जड़ का तने का टहनियों का फल का फूलों का विनाश हो जाता, लेकिन फल के अंदर वृक्ष में कोई भी वृक्ष हो उस वृक्ष के अंदर जो फल पैदा होता है उस फल में जो बीज लगता है पहला पहला बीज वो बीज को विनाशी कहें है नहीं कहेंगे। बीज अविनाशी होता है और सारा वृक्ष विनाशी होता है। इसीलिए गीता में इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की मिसाल दी है, वृक्ष से मिसाल दी है, और वो भी कौन से वृक्ष से, बड़ा वृक्ष, बड़ा वृक्ष बन जाता है, अनेक शाखाओं वाला वृक्ष बन जाता है, अनेक धर्मों वाला वृक्ष बन जाता है, लेकिन उसका जो बीज है वो अति सूक्ष्म होता है या मोटा ताजा होता है, है अति सूक्ष्म होता है, उससे ज्यादा सूक्ष्म मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष पर आ जाओ, चैतन्य वृक्ष, चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला, जो गीता में जिसका वर्णन है इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं इस दुनिया में, इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों में मन बड़ा प्रबल है, मन अगर कोई इंद्रिय का साथ न दे तो वो इंद्रिय अपना सुख दुख नहीं भोग सकती, और मन से प्रबल क्या है, बुद्धि, मनसस्तु पराबुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है, किसकी बुद्धि है, 500 करोड़ मनुष्यों की बुद्धि प्रबल है, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से प्रबल बुद्धि है, कौन सी बुद्धि, बुद्धिमान बुद्धि, फिर बोला है मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि है परसस्तु स
परमात्मा,
जो बुद्धि से भी परे है, जो मनुष्यों की बुद्धि से भी परे है वो है, तो फिर जो बुद्धि की तरफ इशारा किया, मन की तरफ इशारा किया, इंद्रियों की तरफ इशारा किया, तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई तो पार्टधारी होंगे जिनकी इंद्रियां बड़ी प्रबल काम करती है, और नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे, नंबरवार होंगे, चाहे कर्म इंद्रिय हो चाहे ज्ञान इंद्रिय हो, कोई ना कोई है, लेकिन नंबर बार की लिस्ट में है, गिने जा सकते हैं, और उनमें कोई अव्वल नंबर भी होता होगा। नहीं, तो देखो जो बहुत प्रबल होता है उसके सामने सब झुकते हैं या नहीं झुकते हैं, बड़ा बलवान होता है, झुकते हैं ना। और शास्त्रों में पूजा भी उन्हीं की दिखाई गई है, है? कोई भी अनुष्ठान होगा, अनुष्ठान होते हैं ना, जन्म होता है, नामकरण होता है, छठी होती है, यज्ञोपवीत होता है, भले मृत्यु तक होती है, तो दाह संस्कार भी करते हैं, तो ये कर्मकांड करते हैं ना। तो जो भी कर्मकांड अच्छे अच्छे होते हैं उनमें पूजन भी करते हैं, किसका किसका खास पूजन किया जाता है, कथावात्रा करते हैं तो भी पूजन करते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो भी पूजन करते हैं, हैं? हैं। नौ बड़े प्रबल हैं। इंद्रियां कितनी हैं? पुरुषों में कितनी इंद्रियां हैं? गिन भी नहीं पाते। अरे अपनी अपनी तो गिन लो, है? ज्ञानेन्द्रियां गिनो, गिनो एक एक के नाम बताओ, है? आंख, नाक, कान, है? मुख, हाँ वही स्पर्श, हाँ। और कर्मेंद्रियां, पन्ना, हाथ, पांव, और त्याग इंद्रिय, दो इंद्रिय मलमूत्र का त्याग करने वाली, और है मुख, नहीं जिसको हमने स्वाद इंद्रिय कहा उसका नाम स्पर्श इंद्रिय कर दिया। जीभ से ही स्पर्श होता है क्या कि स्वाद होता है? स्वाद होता है। स्पर्श मोस्टली कौन से अंग से करते हैं? कहीं से भी, ऐसे करेंगे ऐसे भी स्पर्श हो जाता है, ऐसे भी स्पर्श हो जाता है। स्पर्श त्वचा से करते हैं ना, तो त्वचा जो है स्पर्श इंद्रिय, पांच हो गए। दस इंद्रियां हो गई। ये जो दस इंद्रियां हैं वो दसों इंद्रियां प्रबल हैं, एक से एक बढ़कर, या कोई और अंग भी शरीर का ऐसा है जो इनसे ज्यादा प्रबल है, हैं? यही ज्यादा प्रबल है। तो जो आकाश के सितारे हैं, जड़ सितारे, और हम आत्मा रूपी सितारे हैं धरती के सितारे, तो जड़ सितारे भी जो मुख्य मुख्य पार्ट बजाने वाले हैं वो कितने हैं? जो नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं, कितने हैं? नौ ग्रह। दस समय का नाम क्यों नहीं? है क्योंकि दसवां नास्तिक जैसा है, न आत्मा को मानता, न परमात्मा को मानता, न ईश्वर को मानता, न भाग्य को मानता, न दुर्भाग्य को मानता, न धर्म को मानता, न धर्म ग्रंथ को मानता, न धर्म पिता को मानता, न धर्म स्थल को मानता। अहं, मैं ही सब कुछ हूं। अहंकार प्रबल है तो किसको पूजेगा? है अपने सामने किसी को मानेगा ही नहीं। जैसे रशिया का नास्तिक धर्म, इतना अहंकारी कि अहंकार में आकर के एटमिक एनर्जी तैयार कर ली। देखें हमारा मुकाबला कौन कर सकता है इस दुनिया में। हमारे अंदर वो ताकत है जो सारी दुनिया को भस्म कर देंगे। तो ईश्वर को नहीं मानते क्या? देह को मानते या देह में बैठी आत्मा को मानते? देह को मानते, जड़त्व को मानते, पंचभूतों को मानते, भौतिकवादी हुए या आत्म अध्यात्मवादी हुए? भौतिकवादी हो। ये दुनिया का ऐसा ग्रुप है जो कोई धारणा पर पक्का नहीं रहता। धर्म है ही नहीं। जैसे धर्म के नाम पर है तो अधर्म ही है। धर्म क्या कहें उनको? मनुष्य हैं या जानवर हैं? जानवर। तो उनकी पूजा करते हैं भारतवासी? नहीं करते। क्यों है? भारतवासी उनकी पूजा क्यों नहीं करते? क्या कारण है? सारी दुनिया उनका लोहा मानती है। यहां तक कि दुनिया का जो महाशक्ति कही जाती है, कौन सा देश? अमेरिका। वो भी उनसे डरते हैं या नहीं डरते हैं? है डरते हैं। ऐसा विकराल है। लेकिन भारतवासी उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? है? अरे भारत में राजाएं तो हुए हैं, राज्य भी हुए हैं छोटे बड़े। उन राज्यों में राजधानी भी हुई, राजा रानी भी हुए, और राजा रानी के परिवारजन संबंधी भी हुए। और जाके कंट्रोलर राज्य अधिकारी भी हुए, बड़े बड़े साहूकार, ऐसे ऐसे साहूकार जो समय आने पर राजा को भी सहयोग कर देते। जब राजा हेल्पलेस हो जाए तब, कुछ हिस्ट्री में याद है भामाशाह, तो फर्स्ट क्लास प्रजा भी होती है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, और उस फोर्थ क्लास प्रजा में भी, राजघराने में भी नंबर बार दास दासी भी होते हैं। अव्वल नंबर के दास दासी तो माता पिता होते हैं, राजा के माता पिता अव्वल नंबर के दास दासी हुए या नहीं हुए? हुए। ऐसे ही द्वयम नंबर के दास दासी, उनका भी महत्व होता है या नहीं है? बेडरूम में जाने देंगे या नहीं है? नहीं जाने देंगे, जाने देंगे। फिर थर्ड क्लास, नहीं जाने देंगे। फोर्थ क्लास दास दासी भी, और फिर राज परिवार में वो वर्ग कौन सा है जो सबसे नीची दृष्टि से देखा जाता है? छांडाल। क्या काम करता है? है मुर्दों को जलाता है। तो मनुष्य सृष्टि में कौन सा धर्म है जो सारी मनुष्य सृष्टि के बीच चांडाल का काम करते हैं? उनका मुखिया है क्या? है या नहीं? उनका मुखिया नहीं होता है? चांडालों में भी राजा के राज्य में कोई बड़ा ता बड़ा मुखिया नहीं होता है, है? इस मनुष्य सृष्टि में वो मुखिया कौन? सब चांडालों का सरदार गृहस्थी होता है या सन्यासी होता है? है गृहस्थी होता है। तो बताओ, वो चंडाल भी होता है बड़े से बड़ा सरदार, और चंडिका देवी होती होगी कि नहीं? चंडालिनी। कोई किसी को गाली देते हैं ना तो क्या कहते हैं? है चंडालिका। और वहां पूजा भी होती है, भारत में पूजा भी होती है, चंडिका देवी की पूजा होती है कि नहीं? होती है। क्यों? सबसे नीचे पार्ट बजाने वाली है तो पूजा क्यों होती? अरे मेल्स में अव्वल नंबर है तो पूजनीय है क्या? और फीमेल्स में अव्वल नंबर है तो भी पूजनीय है, क्योंकि इस दुनिया में एक टाइम ऐसा आता है, कैसा? कि सब चंडिका देवी का साथ देने वाले बन जाते हैं क्या? महाकाली के साथ ही बनते हैं या नहीं बनते? जो कभी भगवान के बड़े थे, बड़े अच्छे थे, अच्छे सहयोगी थे, वो सहयोग करने वाली भुजाएं महाकाली की कमर का क्या बन जाती है? हाँ, सुरक्षा करने वाली बन जाती है। उसका अपमान नहीं होने देती, सुरक्षा गार्ड बन जाती है, मान सम्मान देने वाली बन जाती है। उसका पोता मेल संसार में डिक्लेयर नहीं होने देंगे। इसलिए पूजनीय है। तो सारी दुनिया एक टाइम इस सच रूपी रंगमंच पर जरूर आता है। चंडिका के बच्चे क्या बन गए? है चांडाल, चांडाल नहीं बन गए। कैसे कर्म करते हैं? है विनाशकारी करते हैं कि स्थापना करते हैं नई दुनिया की? विनाशकारी बन जाते हैं। और विनाश काय से होता है? अपवित्रता से विनाश होता है। अच्छा, ये ऑर्डर किसने दिया? इस मनुष्य शक्ति रूपी रंगमंच पर किसने ऑर्डर दिया कि ऐसी अपवित्रता व्यभिचार धारण करो जो सारी दुनिया खलास हो जाए? हैं? शंकर ने किसको ऑर्डर दिया? आपको दिया था क्या? है महाकाली को ऑर्डर दिया, जो उस समय मनुष्य सृष्टि की, सारी मनुष्य सृष्टि की मां जगदम्बा कही जाती है। और मां तो बड़ी शक्तिशाली होती है, परिवार में मां ही सर्वोपरि। खुदा न खास्ता बाप न हो तो, मौजूद न हो तो जब सारी सृष्टि की ऐसी हालत हो जाती है, तब लक्ष्मी वाली आत्मा उसके कंट्रोल में रहती है या नहीं रहती है? अरे पवित्रता की देवी और अपवित्र के कंट्रोल में आ जाती। है गलत है?
कलश, ज्ञान का कलश देगी, ज्ञान का कलश मिलेगा ना।
ज्ञान का कलश ये मिला कि जो अपवित्र हैं उनके कंट्रोल में चलो। जो अपवित्रता से, विविचार से दुनिया का विनाश करने वाले हैं उनके कंट्रोल में रहो।
नहीं, वो तो उनको संभालने के लिए
है।
मतलब लक्ष्मी संभालेगी ना आगे?
लक्ष्मी संभालेगी
जो परिवार होगा।
अरे जब महाकाली पार्ट बजाती है और सारी दुनिया महाकाली के गाल में आ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है, तो वो महाकाली के कंट्रोल में पवित्र आत्माएं भी आनी चाहिए क्या?
नहीं आनी चाहिए।
हैं? नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब सारी दुनिया एक तरफ हो गई यज्ञ के आदि में, तो क्या लक्ष्मी वाली आत्मा जो जगदम्बा कही जाती है बड़ बोली कही जाती है उसके कंट्रोल में नहीं रहती, रहती है या नहीं रहती है? कैसे रह जाती है? तटस्थ हो जाती, उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। बाबा ने बोला ब्रह्म वाक्य है मुरली में, राधा चंद्रवंशी, कृष्ण सूर्यवंशी, कृष्ण अपने को ऊंचे कुल का समझता है, तो जो ऊंच कुल वाले हैं वो नीच कुल वालों के सामने कैसे झोली फैलाएंगे, झुकेंगे झुकेंगे? तो बताया बड़ी मुझ हो गई, नई दुनिया बनेगी तो एक वंश होगा दुनिया में या दो दो वंश होंगे?
एक वंश होगा,
सिर्फ सूर्यवंशियों का राज्य होगा सतयुग में या चंद्रवंशियों का भी राज्य होगा? तो बड़ी मुझ हो गई है। कैसे होगा है इनको? चंद्रवंशी राधा को आना पड़े ऐसे ना, लेकिन पवित्र का आवाहन करें तो आवाहन करने वाले पवित्र को आकर्षित कर सकते हैं है? क्यों? अरे संगठित रूप में आवाहन करें तो जो इस दुनिया में पवित्रतम है माना जाता है, महागौरी के रूप में पूजा करते हैं। कैसी महागौरी? गोरे मुंह वाली, कलमु ही नहीं, गाली देते हैं ना, बड़ी चली कलमु ही, कहां से आ गई काला मुंह करके, इतने दिन कहां रही थी, बोलते हैं कि नहीं? तो जिसको महागौरी के रूप में पूजन करते हैं और नव दुर्गा पूजन में सबसे पहले उसकी पूजा होती है, किसकी? महागौरी की। शादी ब्याह होने के बाद गृहिणी पहली बार घर में आती है तो कहते हैं घर में लक्ष्मी आई, कोई नहीं कहता महाकाली आई। क्यों कहते हैं है? इसलिए कि भाई शुभ बोलेंगे तो शुभ ही होगा। फाउंडेशन में पहली बार आई तो शुभ ही बोलना चाहिए या डाउन कर देना चाहिए? शुभ बोलते हैं। तो जो इतनी गोरे मुंह वाली है कि भारतवर्ष में आज भी उसकी पहले नंबर में पूजा होती है, वो सूर्यवंश में राधा ग्रह लक्ष्मी बनकर आती होगी ना, नहीं आती? आती है, लेकिन आने से पहले अपने भारत में एक परंपरा है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, उच्च वर्ग में, खासकर ब्राह्मणों में, कि वर पक्ष का कोई भी व्यक्ति कन्या पक्ष के दरवाजे पर नहीं जाएगा, कन्या की मांग नहीं करने के लिए। जाते हैं? नहीं जाते। क्यों? अपन को ऊंच समझते हैं। और इस्लामी मुसलमानों में
जाते
हैं, क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो जाते हैं, चंद्रवंशी जाते हैं सूर्यवंशियों के पास, वो एग्रीमेंट करते हैं। क्या क्या करते हैं? अरे तिलक चढ़ाने जाते हैं कि नहीं? पहले टीका चढ़ाने जाते हैं। टीका किस बात की यादगार है? नहीं, पुरुषों को टीका लगाया जाता है, माताएं बिंदी लगाती हैं, आपने सीरियल देखे हैं। भारतीय राजाएं जब युद्ध में जाते थे तो परिवार की कन्याएं माताएं उनको टीका लगाती। हाँ, जो टीका है वो विजय की निशानी है, विजय का तिलक। तो परंपरा पड़ी हुई है तिलक लगाने की। क्या? कि चंद्रवंशियों में जो बड़े हैं उनको सूर्यवंशियों के पास विजय का तिलक लगाने जाना पड़े। तो जरूर सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों पर विजय पाई होगी या नहीं पाई होगी? पहले सूर्यवंशी विजय पाते हैं और मजबूर कर देते हैं दरवाजे पर आने के लिए, और वो आकर के टीका चढ़ाते हैं। इसलिए परंपरा पड़ी हुई है। क्या क्या परंपरा पड़ी हुई है? हैं? कि जो कन्या पक्ष है नीच कुल का होता है, वर पक्ष है ऊंच कुल का होता है, तो नीच कुल वालों को विजय का टीका लगाने के लिए जाना पड़ता है। एग्रीमेंट हो गया क्या कि हम पुजारी हैं और तुम पूज्य हो, हम तुम्हारी रोटी बेटी से पूजा करेंगे, करते हैं या नहीं? आप नहीं करेंगे, झुक गए ना पूरे। लेकिन जब ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है तब जो सूर्यवंशी की कोई राजमाता होती है या नहीं है, वो जाती है चंद्रवंशियों के पास। आज की परंपरा जो चल रही है वो बताई, और वधू की गोद भरती है। क्या गोद भरती है या नहीं भरती है? वो तो स्थूल धन से गोद भरते हैं, है कहाँ की बात, क्या बात है, बेहद की बात क्या है। हाँ, जो जगदम्बा है सूर्यवंश की फीमेल मुखिया, वो क्या करती है, चंद्रवंशी राधा की ज्ञान रत्नों से गोद भरती है। बड़ बोली है ना, है तो जो बोल बोलेगी उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा,
पड़ेगा
है
पड़ेगा।
पुरानी राजधानी जब तक दुनिया की है तब तक यही परंपरा चलती है दुनिया में, जैसे आज देश विदेश में परंपरा चल रही है। क्या परंपरा, पंडित सोई जोई गाल बजाबा। तुलसीदास ने पहले ही बोल दिया, क्या बोल दिया है, देश देशांतर में जो भी शासनकर्ता बनकर बैठे हैं राज सत्ता में, वो क्या करते हैं है? नेता बन करके बड़ी भाषणबाजी करते हैं, हम देश को सबसे ऊंचा बनाएंगे, अपने देश को देशवासियों को सारी दुनिया में इज्जत कराएंगे, बड़ा मान मर्तबा होगा, हम ही सच्चे हैं, हम सच्चाई से सारा काम करेंगे, हम राम राज्य लाएंगे। क्या राम राज्य हम लाएंगे, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? और उन बोलने वालों से प्रभावित होते हैं वो प्रजा बनती है, प्रभावित होने वाले प्रजा बनती है, तो जो प्रजा बनती है वो प्रजा वर्षों से देखती चली आ रही है, बीसियों वर्षों से, कि राम राज्य आता जा रहा है या रुलाने वाले रावण का राज्य आ रहा है। हर देश में कौन सा राज्य आता है, रावण राज्य आता है, झगड़े टंटे बढ़ते ही जाते हैं। तो ये जो सारी परंपरा है बड़बोलों की, ये कहां से शुरू हुई है, संगम युग में किसके द्वारा शुरू हुई है, जगदम्बा तो सतो प्रधान नाम है, मां काली के द्वारा, जिसकी लंबी जीव दिखाई जाती है, जीव से बोल बोल करने में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और सभी धर्मों के सत्ताधारी दिग्गज उस एक ही धर्म वालों से डरते हैं। दुनिया के कितने भी बड़े बड़े सत्ताधारी दिग्गज हों, हिस्ट्री उठा के देख लो, वो सब उसी धर्मावलंबियों से डरते हैं जिन धर्मावलंबियों के देश से महाकाली जन्म लेती है संगम में। क्या कहा, वो महाकाली रूप में पार्ट बजाने वाली शरीर से कहां से जन्म लेती है, पंजाब से जन्म लेती है। जिस पंजाब के लिए व्यक्तवाणी में बोला, पहले नहीं बोला, जब वो पार्ट बजाने के लिए रंगमंच पर प्रस्तुत होती है तब बोला, पंजाब की धरणी कन्यादान में अव्वल नंबर गई। 83-84 की बात है। क्या 83-84 से पहले पंजाब की कोई कन्याएं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ईश्वर के अर्पण नहीं हुई थी? हुई थी या नहीं हुई थी? है, हुई थी। तो वो अव्वल नंबर नहीं हुई। जहां तक बोलने की बात है तो उस समय भी ब्रह्मा कुमारियों के संगठन में चंद्रमणि दादी का तो बोल बोल में कोई नहीं मुकाबला करता था। करता था? नहीं करता था। तो उनको अव्वल नंबर नहीं बोला। एडवांस पार्टी में जिस कन्या ने पहले अर्पण होकर के एडवांस पार्टी में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले संगठन का उदय किया, उदय करने के निमित्त बनी, उसकी तरफ इशारा दे दिया। पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। तो पंजाब की धरणी का नाम क्यों लिया है? क्योंकि भारत में जितने भी विदेशियों के आक्रमण हुए उन आक्रमणों में पहले पहले और हिस्ट्री में अंत तक भी सबसे जास्ती कौन सी धरणी वालों ने मुकाबला किया? पंजाब की धरणी वाले सिखों ने मुकाबला किया। इतने बलिदान है, हिंदुओं ने नहीं दिए। जितने बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब की धरणी वालों ने दिए। तो बेहद है संगम युगी दुनिया में जो रिहर्सल होती है उसमें भी ज्यादा बलिदान किसका कहें है? पंजाब की धरणी का बलिदान कहें, जिसके अज्ञान की रात प्रैक्टिकल जीवन में भी गुजर जाती है। क्या प्रैक्टिकल जीवन धारण करने में अज्ञान की रात गुजर गई, पक्की ज्ञानी बन गई, उसका अव्वल नंबर नहीं है? नहीं। अरे उसका अव्वल नंबर नहीं होना चाहिए। कौन, किसकी बात हो रही है? किसकी? लक्ष्मी की बात हो रही। गुजरात जिसके अज्ञान की रात गुजर गई और उसकी राजधानी कहां है? अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर है। कहां पलती है? जो गुजरातियों की राजधानी है, राजाओं की धारणा शक्ति कही जाती है, वो कहां पलती है? गांधीनगर। और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का गांधी कौन है जो जीवन भर कहता रहा राम राज्य आएगा राम राज्य लाऊंगा। हर राम राज्य नहीं आया, रावण राज्य में ही चला गया। और बजाय राम राज्य आने के और ही उनके बनाए हुए संगठन में आज क्या देखने में आ रहा है, झूठ है ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच्चे की रत्ती नहीं। ऐसा झूठ जिसको सामान्य आदमी पकड़ भी नहीं सकता, कोर्ट और कचहरियां नहीं पकड़ सकती। क्या कहा? ऐसा झूठ जिसे महागौरी का टाइटल मिलता है भारतवर्ष में, वो अपने गौरीपन का आधार लेकर पुरुषार्थी जीवन में उस झूठ को डाउन करने के लिए सच्चाई का कोई सहयोग नहीं दे पाती। दे पाती है? है? नहीं। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोल दिया, त्रिमूर्ति में एक शेर, एक घोड़ा और एक बकरी। कान तो बड़ा लंबा होता है क्या, लेकिन पड़ा हुआ होता है या खड़ा हुआ होता है? बेकार। सुना न सुना सब बेकार। काम में आता है? नहीं आता। जिसने वो कान पकड़ लिया बस उसी के अंडर में चलेगी, दूसरों के अंडर में नहीं चलेगी। कान में वो बात डाल दी कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। क्या बात डाल दी? दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। और जो चंद्रवंश के मुखिया हैं, उन मुखियों ने और उन मुखियों का भी जो मुखिया, उन्होंने वो धंधा करना शुरू कर दिया। क्या? दृष्टि से हम सृष्टि सुधारेंगे, क्योंकि त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चेहरा ही विष्णु है और ब्रह्मा का चेहरा ही शंकर है, परंतु ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए, उनको तो साकार आंखें स्थूल में है ही नहीं। तो अब दृष्टि से सृष्टि कौन सुधारेगा, बताओ कौन सुधारेगा? है बाप सुधारेगा? अरे बाप, बाप को जानते हैं जो सुधारेगा। है जानते मानते किसको है? है? ब्रह्मा माने शरीर छोड़ दिया, चलो पुरुष तन था, स्त्री चोले में जो मां थी उसने पहले ही शरीर छोड़ दिया। फिर ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, इन सभी सितारों में जो ब्राह्मणों के रूप में बाबा के सामने बैठे हुए थे, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमार का जी। क्या कहा? किसकी? कुमार का जी। तो जिसकी सबसे जास्ती खातरी होती थी ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कुछ बोल पाती होगी या नहीं बोल पाती होगी? है? अरे बोल बोल करने में होशियार होगी या नहीं होगी? है? होती है। इतनी होशियार थी कि ब्रह्मा बाबा के मुख से जो मुरली निकलती थी, तीन पेज या चार पेज की भी, सारी की सारी मुरली ज्यों की त्यों सुना देती। तो ब्राह्मणों की दुनिया में होशियार नहीं मानी जाएगी? है? अरे जो एडवांस पार्टी वाले हैं, उनसे कहा जाता है पूरा एक घंटे का क्लास सुना, डेढ़ घंटे का क्लास सुना, और कहते दो वाक्य बाबा के बोल के जाओ, तो चौकड़ी मार जाते हैं। या तो पूरा सही सही सुनाते भी नहीं, और वो आत्मा ज्यों का त्यों मुरली सुनाती थी। तो प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? पड़ेगा। और त्रिमूर्ति में जिस मूर्ति को बकरी बता दिया, उसके भी कान सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? है? सुन करके जैसे सबकी चाल होगी, बकरी की चाल कैसी होती है, भेड़ बकरियों की चाल कैसी होती है पता है कि नहीं? है? एक बकरी मैं ब्रह्मा बाबा चले गए, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब इस दुनिया का सुधार कौन करेगा? मैं बड़े बड़े पोस्टर छपा दिए, ऊपर शिव ज्योति बिंदु, नीचे त्रिमूर्ति, सबसे ऊपर कुमारका दादी की मूर्ति, बीच में जानकी दादी की मूर्ति, नीचे गुलजार दादी की मूर्ति। और उसकी यादगार है हमारी गवर्नमेंट का झंडा, झंडे में सबसे ऊपर कौन? लाल कपड़ा, क्रांतिकारी, जिस पे लिखा जाता है सत्यमेव जयते। और आत्मा ही तीनों पार्ट में जाती है, दिव्य गुणों का स्थापना करती है अपने अंदर और दुर्गुणों का विनाश करती है अपने अंदर। और जो सदगुण धारण किए हैं देवताओं के, उन दिव्य गुणों की पालना करती है। तो हम आत्मा ही प्रैक्टिकल में ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट बजाने वाले हैं। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब ये मूर्तियों का पार्ट कौन बजाएगा? कौन बजाएगा? है? हम ही बजाएंगे। इसलिए जब हम ही पार्ट बजाएंगे तो संघ के रंग से सुधार कौन करेगा? हम ही सुधार करेंगे। और इंद्रियों में जो संग का रंग लगाने वाली है, उनमें आंख बड़ी प्रबल है, तो बस धंधा शुरू हो गया। मुरली का वाक्य बिल्कुल भूल गया, जो मुरली में बोला तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे जैसे बाप करते हैं। एक एक को बैठ करके सकाश देते हैं। कौन? शिव बाप। बोला तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे, मना कर दिया या स्वीकृति दे दी? मना कर दिया। सुनी अनसुनी कर दी। अब बस धड़ाधड़ धंधा चालू हो गया, योग सिखाने का नया धंधा चालू हो गया। दुनिया में ऐसा अजूबा गरूब धंधा भारत का राजयोग, जिस धंधे में दुनिया तो 5000 वर्ष लेती है सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में, और यहां क्या हुआ? यहां कितना टाइम लगा है? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मम्मा का गद्दी नशीन कौन बन के बैठ गई, जिसका ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती मान मर्तबा होता था? 66 से लेकर के 76 तक जब तक सारे भारत में बड़े बड़े शहरों में ढेर के ढेर मेले शुरू हो गए, कचरा बहाने वाली नदियों के द्वारा दृष्टि का वृत्ति का कचरा बहता रहा मेलों में, आज भी यादगार है, मेलों में जाके देख लो, भक्ति मार्ग में क्या होता है? हैं? ऐसे मेले लगते हैं जिनमें बाबा का महावाक्य ही बताता है कि मेलों में मेला ही मेला इकट्ठा होता है। ये नदियों का मेला है, उसमें सागर है? सागर नहीं होता। ये नदियों के मेले भक्ति मार्ग में भी और भक्ति मार्ग की शूटिंग संगम युग में भी बार बार लगते हैं। जब से कलयुग की शूटिंग शुरू होती है तब से मेले मलाखड़े लगते हैं। पहला मेला लगा था 73 के आदि में दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, और दिल्ली को सब फॉलो करते हैं। पहले शुरुआत दिल्ली करती है, फिर सभी शहर भारत के फॉलो करते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। इसलिए तुम बच्चों को दिल्ली की सबसे जास्ती सेवा करनी, क्योंकि दिल्ली में राजधानी स्थापन होगी। तो मेला नदियों का कलयुगी दुनिया में लगना शुरू होता है, जिस मेले में ढेर का ढेर दृष्टि का वृत्ति का यहां तक के कर्मेंद्रियों का भी मैला इकट्ठा होने लग पड़ता है। तब क्या हाल होगा है? दुनिया की जनसंख्या बढ़ेगी या कम होगी? ब्राह्मणों की दुनिया में वो बेहद के मेले मलाखड़े शहर शहर में शुरू हुए 73 से लेकर के 76 तक। और बहुत ही पतन हो जाता है दृष्टि वृत्ति का, ढेर के ढेर ब्राह्मण निकल पड़ते हैं मेले मलाखड़ों से। चलो भाई ब्रह्मा कुमारियों का मेला इकट्ठा हो रहा है, चलो देखें, हम भी चलेंगे, तुम भी चलो। उनका फाउंडेशन ही खराब है। बाबा ने क्या बोला? एक एक को बैठ करके ज्ञान देना है या हुजूम को ज्ञान देना है? वहां मेले में ढेर के ढेर इकट्ठे होने लगे राजयोग शिविर पंडाल में, और सबको बैठ करके कच्ची उम्र की कन्याएं दृष्टि देने लगी। ये दृष्टि बत्ती का कचरा इकट्ठा हुआ या नहीं हुआ? तो बिचारी बकरियों का क्या हाल होगा है? अरे बकरियां, जो बकरियों के पीछे चलने का जिनका स्वभाव होता है, अपनी अकल लगाती नहीं। तो गड्ढे में एक जाएगी तो सभी पीछे पीछे गड्ढे में तालाब में घुसेंगी या नहीं घुसेंगी? तो यही हाल होता है। जो महागौरी का पाठ बजाने वाली है सृष्टि के आदिकाल से ही, लेकिन ज्ञानियों के संग में आकर ज्ञान यज्ञ में, यज्ञ कुंड में जब कूद जाती है तब उत्थान होता है। जब तक ज्ञान यज्ञ कुंड में नहीं आती तब तक पतन होता रहता है दृष्टि का, वृत्ति का, या उत्थान होता है? हैं? पतन होता है। तो अब समझ में आया कि सारी दुनिया एक तरफ भले हो जाती है, लेकिन जो महागौरी का पार्ट बजाने वाली पवित्र आत्मा है वो कैसे विरोधी हो गई है? वो विरोधियों के गुट में कैसे चली जाती है? हैं? हाँ, क्योंकि कलयुग के अंत में दुनिया की हर चीज तमोप्रधान बनती है। एक है जो दुनिया की जो धारा है, जैसे नदी की धारा होती है ना, सारे प्राणी उसमें बहते बहते नीचे जाते हैं, परंतु एक प्राणी है जो नदी की धारा को काट करके ऊपर जाता है। कौन सा प्राणी है? है सर्प, सांप। और नागों के कुल में बड़ा नाग कौन माना जाता है? वासुकी नाग। वासुकी नाग का मतलब क्या है? है वसु का मतलब है धन संपत्ति। क्या? धन संपत्ति। और धन संपत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, देने वाले का नाम है वसुदेव, है कि नहीं? है? भगवान कृष्ण माने जाते हैं, उनके बाप का नाम क्या था? वसुदेव। धन संपत्ति देने वाला वसुदेव, लेकिन कौन से कुल का था? है यादव कुल का था। यादव कुल में भगवान को जानने मानने वाले ज्यादा होते हैं या न जानने न मानने वाले ज्यादा होते हैं? हैं? ज्यादा होते हैं। वो अपन को ही सब कुछ बड़ा करता धरता समझते हैं। ये जो साइंस है वो विदेशियों से निकलती है या स्वदेशियों से निकलती है? विदेशियों से निकलती है। साइंस कैसी? पंचभूतों का आलोड़न करने वाली साइंस, जो पांच जड़ तत्व कहे जाते हैं, या आत्मा का आलोड़न करने वाली? पंचभूतों का, जड़ तत्वों का, देह का, देह के पांच विनाशी तत्वों का विश्लेषण करने वाली। देह विनाशी तो देह के पांच तत्व भी विनाशी, तो पांच तत्वों का विश्लेषण करने वाले, मनन चिंतन मंथन करने वाले भी विनाशी। आज नहीं तो कल क्या होने वाले हैं? विनाश को पाने वाले हैं। और आत्मा अविनाशी क्या? और आत्मा की तीन शक्तियां, मन संकल्प विकल्प करने वाली, सोचने वाली शक्ति, और बुद्धि फैसला करने वाली, परखने वाली, निर्णय शक्ति, और तीसरी है परिवर्तन शक्ति, संस्कार शक्ति। ये तीनों शक्तियां देह की हैं या आत्मा की हैं? आत्मा की शक्तियां हैं। ये तीनों ही शक्तियां जो आत्मा की प्रबलतम शक्तियां हैं, इनका आलोड़न करने वाला, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य सृष्टि में कोई तो होगा जो सबसे जास्ती आलोड़न करे, मनन चिंतन मंथन करे। है कौन? है? अरे बुद्धि तो आत्मा है ही, परम ब्रह्म। ब्रह्म माने बड़ी माँ, परम ब्रह्म माने बड़ी माताओं में परम पार्ट बजाने वाली। परम ब्रह्म माँ है या बाप है? है माँ ज्यादा बुद्धिमान होती है, माता तो अपनी बात झंडा ऊंचा करती है। क्या माता कहती है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। माँ ज्यादा बुद्धिमान होती है या बाहर की दुनिया में अनुभव लेने वाला, सारी दुनिया में घूमने फिरने वाला बाप ज्यादा बुद्धिमान अनुभवी होता है? खास करके भारत की माताएं तो घर परिवार में ही जीवन बिताती है। तो उनका दायरा तो बुद्धि का सीमित होता है ना, इसलिए मन के आधार पर भी, बुद्धि के आधार पर भी, तन के आधार पर भी, तन की इंद्रियों के आधार पर भी, हर प्रकार से अबला है या सबला है? अबला है। प्रबल पुरुष होता है, इसलिए जो पुरुष प्रबल है तो सृष्टि के आदि में कोई तो युगल होगा होगा या नहीं होगा? जो माता फीमेल और पिता मेल का पार्ट बजाने वाला हो, वो एक शख्सियत जिसे सब धर्म वालों ने माना है सृष्टि का आदि पुरुष, आदम, एडम, आदिदेव, वो आदिदेव ऐसा पुरुष है जिसे गीता में भी प्रबल बुद्धि की उपाधि दी है। क्या? इंद्रियां प्रबल, इंद्रियों से मन प्रबल और मन से बुद्धि प्रबल। माने कोई 9 इंद्रियां हैं स्पेशल इस दुनिया में, कोई चैतन्य आत्माएं हैं, कोई चैतन्य ग्रह हैं, वो आसमान के जड़ सितारे और वो 9 धरती के चैतन्य सितारे, और उन 9 ग्रहों के बीच, उन 9 के बीच में कोई एक बड़ा प्रबल है जिसके लिए बोला गीता में कि 9 इंद्रियां 10 इंद्रियां बड़ी प्रबल है और उन इंद्रियों में मन बड़ा प्रबल है, 11वीं इंद्रिय। और जो मन के रूप में पार्ट बजाने वाली संकल्प विकल्प शक्ति है, उससे भी ज्यादा प्रबल कौन? कोई बुद्धि के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है जो मनुष्यों के बीच बड़ी प्रबल आत्मा है। बुद्धि, और उस बुद्धि से भी प्रबल है यो बुद्ध्या परसस्तु सह, जो बुद्धि से भी प्रबल है वो है। तो बुद्धि को भारतीय परंपरा में तीसरे नेत्र के रूप में दिखाया है। इस मनुष्य सृष्टि में कोई त्रिनेत्री के रूप में दिखाया गया पुरुष है या नहीं है? है? जो त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है उसी के लिए बोला क्या? क्या बोला? मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। और वो बुद्धि इस मनुष्य शक्ति में निर्णय शक्ति के रूप में, परक शक्ति के रूप में इस दुनिया में इतनी प्रबल कैसे हो गई? कारण क्या है? है तो आत्मा ना, वो आत्मा इतनी प्रबल कैसे हो गई, प्रखर कैसे हो गई बुद्धि में? है
मनन चिंतन
नहीं,
परमात्मा उसके साथ
ज्ञान के आधार है,
ज्ञान के आधार है।
क्योंकि जो भी आत्मा है इस मनुष्य सृष्टि में मन बुद्धि वाली, नंबर 1, उन सभी आत्माओं का जो बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, जो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है, जिसकी बुद्धि को कोई
घुमा नहीं सकता,
प्रभावित नहीं कर सकता, वो शिव है। वो शिव बाप है और बाप अपने बड़े बच्चे को क्या करता है, बाप मन वर्षा, वर्षा देता है तो बाप है, वर्षा नहीं देता तो काय का बाप, कुछ न कुछ कुछ तो वर्षा देता, तो बड़े ते बड़ा बाप है तो वर्षा भी कैसा देगा, बड़े ते बड़ा वर्षा देता है, लेकिन किसको देता, बड़े बच्चे को देता। अब बड़े बच्चे में क्या देख लिया, जो उसी को देता, और बच्चे नहीं है क्या है? अरे लक्ष्मी देखो कितना बढ़िया बच्चा है, है? उससे ज्यादा सुंदर कोई है, है? है? अंदर और बाहर आंतरिक सुंदरता बाह्य सुंदरता दोनों में सुंदर, बाह्य सुंदरता में देखो तो कौन है, बाहरी सुंदरता में सबसे ज्यादा बढ़िया इस मनुष्य शक्ति में कोई है?
अरे
वो तो अंदरूनी सुंदरता भी है, बात हो रही है सिर्फ बाहरी सुंदरता बहुत बढ़िया है। अरे जगदम्बा का चेहरा नहीं देखा चित्रों में है? कलकत्ते में जब दुर्गा पूजन होता है तो देखना जाके सबसे जास्ती किसकी मूर्ति सजाते हैं,
दुर्गा
है?
दुर्गा
है?
दुर्गा,
दुर्गा की मूर्ति सजाते हैं, जगदम्बा की मूर्ति सजाते हैं, इतना बढ़िया और किसी का श्रृंगार किसी देवी का नहीं होता जितना जगत जननी का होता है, जगदम्बा का होता है, दुर्गा का होता है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी क्या करती है, दुर्गति का नाश कर देती है। जितने भी दुर्गति में गए हुए हैं सबके मुंड कटे और दुर्गति का नाश, उसके बाद दुर्गति होती है। जितनी दुर्गति होनी होती है वो मुंड कटने तक दुर्गति, उसके बाद गति और सदगति। तू बताया कि जो महाकाली है, जगदम्बा है, दुर्गा है, कौन सी माला का मणका है? है रुद्र माला का मणका है। रुद्र माला में अब्बल नंबर मणका कौन है? जगत पिता, जिसके नाम से रुद्र यज्ञ की शुरुआत होती है। जैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की शुरुआत करने वाला मुखिया कौन? ब्रह्मा। वैसे ही अविनाशी रुद्रयान यज्ञ की शुरुआत करने वाला कोई मूल होगा या नहीं होगा मुखिया है? कोई नहीं है? हाँ रुद्र। शिव यज्ञ नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता? रुद्र यज्ञ। ब्रह्मा ने जो यज्ञ शुरू किया ज्ञान का, उस संगठन का नाम भले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पढ़े, लेकिन वो अविनाशी नहीं है। विनाश होने वाला या अविनाशी है? यहां तक अविनाशी कि आज दुनिया में जो 2500 साल से भक्ति मार्ग चल रहा है, उस भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के कोई मंदिर नहीं बनते पूजा करने के लिए, कोई मूर्तियां नहीं बनती, कोई याद नहीं करता। तो विनाशी या अविनाशी है? विनाशी। क्यों विनाशी?
रचे तो साकार है,
है?
रचे तो साकार है ना, साकार है ना ब्रह्म।
साकार मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं है? साकार होने से विनाशी हो जाता है, पक्का है। विनाशी इसलिए कि सुनता बहुत है, सुनाता बहुत है। क्या? सुनने सुनाने का काम करता है, बोलने का काम करता है, लेकिन समझने का काम नहीं करता। तो भक्ति मार्ग में वो भगवान के रूप में भले पूजा जाता है, लेकिन उसका वाद्य यंत्र क्या दिखाते हैं? हरे कृष्ण भगवान के रूप में पूजा जाता है, उसका वाद्य यंत्र क्या है? बजाने वाला यंत्र, मुरली। वो काठ की मुरली होती है या नहीं? क्या मतलब हुआ? कठ बुद्धि, जिसकी बुद्धि में कोई भी बात की गहराई नहीं बैठ सकती, प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल शूटिंग हुई है या ऐसे ही शास्त्रों में चित्रों में दिखाई दिया है? बुक्काथ की मुरली चरित्र की यादगार है। काठ की मुरली बजाई, कठ बुद्धि है, दूसरे शब्दों में शास्त्रों में उसका नाम हिमवान, हिमालय पड़ा। काई का आलय? हिम बर्फ का आलय, घर बर्फ बहने वाली होती है या पत्थर जैसी हो जाती है, जाम हो जाती है। तो बुद्धि कैसी है? जाम बुद्धि, जामड़ी बुद्धि है, लिक्विड नहीं है वो, ज्ञान जल बहने वाला नहीं है, उसे कोई का कल्याण कल्याण नहीं हो सकता। नदियों में जल बहता है तो शुद्ध रहता है, तालाब का जल है रुका हुआ होता है तो कैसा हो जाता? गंदा हो जाता। एक ही तालाब है जिसका जल रुका हुआ है, लेकिन पारदर्शी देखने में आता है, और बाकी जितने भी ताल तलैया हैं दुनिया में वो सबके जल ज्ञान जल समझो, कैसे हो जाते? गंदे हो जाते। वो कौन सा तालाब है? है सरोवर माना तालाब, ज्ञान मान सरोवर, मैदानी दुनिया में नहीं। इस मैदान में आकर नदियों में भी कचरा गिर जाता है क्या? तालाबों की तो बात, पोखरों की छोड़ दो, गड्ढे गड़ीचियों की, नदियों में भी कचरा आ जाता है। तो मैदान का सरोवर नहीं है, मैदान नीचे स्टेज में और कैलाश पर्वत ऊंची स्टेज की यादगार है। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान ने आकर के कोई कैलाश पहाड़ पर पाठ बजाया और पहाड़ पर रह करके सारी दुनिया की सदगति की, नहीं। ये मन बुद्धि की ऊंची स्टेज की बात है, ऐसी ऊंची स्टेज जिस ऊंची स्टेज में इस दुनिया का कोई भी प्रकार का मैला, मिट्टी, धुआं, जिससे पॉल्यूशन होता है दुनिया में, वो उस ऊंची स्टेज पर नहीं पहुंच सकता। ऐसी ऊंची स्टेज में जो ज्ञान जल है वो मैदानों के, पोखरों, तालाबों, गड्ढे गड़ीचियों की तरह नहीं है रुका हुआ। क्या उस तालाब से एक ऐसी नदी निकलती है जो नदी भारतीय परंपरा में ब्रह्मपुत्री कही जाती है? किसकी पुत्री? ब्रह्मा की पुत्री। दुनिया की ऐसी कोई नदी नहीं है जो दुनिया की सभी नदियों के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा समय लंबे लंबे काल तक ऊंची स्टेज पर बहती रही हो। एक ही नदी है, क्या? ब्रह्मपुत्री। जिस ब्रह्मपुत्री नदी का मेल दूसरी नदी के नजदीक आने पर हो जाता है, उस स्थान का नाम है उस जिले का नाम क्या है? गुवाहाटी। हत्ती गौ मिलती है। कैसी गौ? हत्ती स्वभाव वाली गौ। कोई कितना भी समझाए, उस हट्टी स्वभाव वाली गौ की, देवी की तो बात ही छोड़ दो। उसके मंदिर में जो भी भक्त लोग होते हैं, पुजारी होते हैं, उनको समझाने जाएंगे तो वो एक भी बात सुनने के लिए तैयार है, उल्टा हमको समझाने लगे। ऐसी गुवाहाटी में जाकर उससे मिलती है तो दिशा ही बदल जाती है। क्या? कौन सी दिशा हो जाती? पहले ठेठ पश्चिम की ओर आ रही थी, फिर गंगा नदी से मिलकर गुवाहाटी में दक्षिण दिशा में चल पड़ती। किस दिशा में?
दक्षिण दिशा।
दक्षिण दिशा में किनका वास माना जाता है?
दक्षिण
है?
दक्षिण।
हाँ, भासुरी संस्कार वालों की ओर चल पड़ती। वो कान पकड़ ले तो वो नदी का गायन है। महागौरी लंबे समय तक ऊंची स्टेज पर बहने के कारण उसमें कोई कचरा मैदान का नहीं गिरता। अंत में जाकर के दक्षिण की ओर आती है तो ब्रह्मपुत्र और सागर का मेल होता है। वास्तव में वो ही मेला है असली। क्या उसको क्यों कहते हैं गंगा सागर का मेला है? ज्ञान गंगाओं में उसकी शुमार है, क्योंकि गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें सारी नदियां आकर मिलती हैं। भारत की गंगा उत्तर भारत की ऐसी नदी है जिसमें नैपाल की सारी नदियां आकर मिलती हैं। कौन से देश की? नैपाल। नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन। स्थूल नेपाल देश, उसकी स्थूल नदियां, और बेहद का नैपाल देश जिसका इशारा व्यक्तवाणी में दे दिया था 2004 के आसपास, याद है क्या है? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। उस नई दुनिया में जो पालना करने वाले होंगे संगठन के, उस देश का नाम क्या हुआ? नैपाल। दुनिया का सबसे पहला और सबसे नया संगठन, यहां नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। क्या फाउंडेशन गुप्त में डाला जाता है, गहराई में डाला जाता है या प्रत्यक्ष में डाला जाता है? आज भी यादगार में देख लो, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो आसपास क्या करते हैं? पर्दा लगाए देते हैं, कोई देखे नहीं क्या हो रहा है। तो संगठन का नाम, हद की दुनिया में नेपाल और बेहद की दुनिया में है एन एस। एन माने नया, एस माने संगठन। क्यों है? कैसे नया संगठन? कि जो नई राजधानी तैयार होनी है उस नई राजधानी को तैयार करने वाले रुद्रमाला के मणके होंगे या विजयमाला के मणके होंगे? हैं? रुद्रमाला के मणके होते हैं। राजाएं नई राजधानी तैयार करते हैं युद्ध करके या रानियां तैयार करती हैं? हैं? विजयमाला तैयार नहीं करती राजधानी, कौन तैयार करता है? है रुद्र के बच्चे रुद्रगण। उस स्वभाव संस्कार से अनेक जन्मों के पुरुष हैं, उनके ज्यादा जन्म पुरुष रूप में होते हैं, उनके ज्यादा जन्म स्त्री रूप में नहीं होते। तो अनेक जन्मों के स्वभाव संस्कार पुरुष के होने के कारण वो सब भले स्त्री चोले वाले हों, तो भी स्वभाव संस्कार से कैसे होते हैं मेल। इसलिए भारतीय परंपरा में जो मिलिट्री आज भी बनाई जाती है, मिलिट्री होती है ना, उसमें कौन कौन से बटालियन बहुत ज्यादा महत्व की होती है? हा, गोरखा बटालियन भी महत्व की और राजपूत महत्व के। तो ये सबसे जास्ती सेवा जहां से सूर्यवंशी आत्माएं निकले हैं, कौन से देश की? नेपाल के। तो बताया कि रुद्रमाला से निकलता है नेपाल और सिर्फ नेपाल वाले सूर्यवंशी आत्माएं ही निकलती हैं या सभी धर्म के बीज निकलते हैं? है, सभी धर्मों के बीज निकलते हैं। लेकिन जो राजधानी का फाउंडेशन लगाने वाले होते हैं वो मोस्टली है मोस्टली सूर्यवंशी होते हैं। भोलेनाथ के बोले बच्चे सीधे साधे स्वभाव वाले, कोई तिकड़मबाजी नहीं। वैसे भी भारत में देखो जो साहूकार संप्रदाय होते हैं वो अपने घर परिवार में गार्ड के रूप में कहां के लोगों को रखना पसंद करते हैं? है, नेपाल के लोगों को रखना पसंद करते हैं। क्यों? है, तिकड़मी होते हैं या भोले वाले स्वभाव के होते हैं? भोले वाले स्वभाव के, सच्चे होते हैं। तो ये सारा फाउंडेशन कहां पड़ता है? है, कौन से युग में पड़ता है? इस ब्रॉड ड्रामा की, 5000 वर्ष के ड्रामा की, चार युगों के सीन वाले ड्रामा की जहां शूटिंग होती है युग में, वो संगम युग है जिसकी यादगार पुरुषोत्तम मास हम मनाते हैं। कितने वर्षों के बाद है? कितने वर्षों के बाद? चौथी वर्ष मनाते हैं। माना चार युग जब पूरे होते हैं तो संगम युग शुरू होता है। यहां की यादगार है, यहां होती है सारी दुनिया की ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल। नेपाली भी यहां तैयार होते हैं, भारतीय भी यहां तैयार होते हैं, क्रिश्चियंस भी यहां तैयार होते हैं, बौद्ध भी यहां तैयार होते हैं। हर धर्म के बीज कहां तैयार होते हैं? हैं? संगम युग में जो बीज रूप आत्माएं हैं, बीज माने सारे संसार के बाप समान, बीज बीज माने बाप, वो संगम युग में बड़ी एडवांस आत्माएं हैं। क्या? जैसे मिलिट्री होती है ना, दो देशों में युद्ध होता है तो युद्ध के समय आगे आगे मोर्चे पर कौन तैयार किए जाते हैं? है? जो मिलिट्री आगे आगे तैयार की जाती है, रहती है, उसको कहते हैं एडवांस पार्टी। मोर्चे की सारी तैयारी कौन करता है? एडवांस पार्टी करती है। जिनके लिए बोला है व्यक्तवाणी में, उनके परिवार में तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी जाओ या न जाओ, क्या तुम जाओ या न जाओ, लेकिन आने वाली दुनिया की राजधानी का फाउंडेशन लगाने वाले वो हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों की मूल रूप में जन्मदात्री कौन है? या कहो रुद्रमाला, रुद्रमाला का मुखिया कौन? और मुखियानी कौन है?
आदम
है,
आदम
हो। त्रिमाला का मुखिया रुद्र हुआ, और रुद्र जो रुद्र हुआ उसका जन्म किससे? रुद्र ब्राह्मण है या नहीं है? रुद्र शंकर को कहा जाता है। तो रुद्र है तो रुद्राणी भी होगी। वो कौन? जगदम्बा। जिस रुद्राणी से रुद्र का जन्म हुआ, या यूं कहें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म होता है, तो कोई ब्रह्मा होगा या नहीं होगा जिसके मुख से पहला ब्राह्मण जन्म ले? है वो पहला ब्राह्मण कौन? बड़ी माँ। वो ब्राह्मण के ब्राह्मणी न ब्राह्मणी न ब्राह्मण, वो ब्रह्मा। क्या कहा? वो न ब्राह्मणी है, क्योंकि ब्राह्मणी का जन्म भी ब्रह्मा से और ब्राह्मण का जन्म भी ब्रह्मा मुख से। वो रुद्राणी क्या हुई है? ब्रह्मा है साकार रूप में। चोले के हिसाब से भी स्त्री चोला या पुरुष चोला है? स्त्री चोला। तो वो जो स्त्री चोला है उसके मुख से जिसने सुना ब्रह्मा दादा लेखराज के साक्षात्कारों को, किसने सुना है? हाँ, मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा ने पहले सुना, जो ब्रह्मा का भागीदार था, जिस भागीदार के पास ब्रह्मा बाबा सारे भारत में अपने साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन लेने के लिए दर दर भटकते रहे, अपने गुरु के पास गए, पूर्ववर्ती गुरुओं के पास भी गए, वाराणसी में ढेर के ढेर विद्वान पंडित आचार्यों से मिले, कोई ने उनके साक्षात्कारों का समाधान नहीं किया, तो मजबूरन उनको अपनी दुकान का भागीदार याद आया, जिस भागीदार को उन्होंने बड़ा सोच समझ करके रत्नों का पारखी समझ करके, अपने से भी ज्यादा पारखी, अपनी दुकान में 10 साल पहले से ही मैनेजर बनाकर रखा हुआ था। मैनेजर को मजदूरी मिलती है कि नहीं है? मिलती है। तो सेवक हुआ या नहीं हुआ? है, सेवक हुआ, भले मुखिया सेवक। तो बाबा को वहां से समाधान मिल गया। कैसे? वो बड़ बोली ने हिम्मत कर ली उसको सुनाने की। साक्षात्कारों की बात, और उसने जैसे ही सुना तो सुनने के साथ साथ कोई समझ भी सकता है या नहीं समझ सकता है? समझ भी सकता है। और वो साक्षात्कार जिनका अर्थ बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य नहीं दे सके, वो हीरों का, इस दुनिया का ऐसा व्यापारी जिसकी छोटी सी दुकान थी जिंदगी भर, और वो दुकान चलती भी नहीं थी, कोई उसे पूछता भी नहीं था, वो व्यक्ति उन साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन दे सकता है? दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन ब्रह्मा बाबा प्रभावित थे उसकी सच्चाई, सफाई और विद्वता से। तो जैसे ही माता ने सुनाया, शिव ने प्रवेश कर लिया। और जिनके सामने प्रवेश किया वो तीन आत्माएं थी, आदि में भी तीन और अंत में भी, वो तीन ही संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, जिनके नाम पर आज भी हमारे भारत में तिरंगा झंडा फहराते हैं और लकब लगाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला तीन रंगों वाला कपड़े का झंडा। कपड़े का झंडा विजय करता है, है? है? यह शास्त्रीय भाषा में कपड़ा किसी और को कहा जाता है, है? हाँ, शरीरम, शरीर को वस्त्र कहा जाता है, शरीर को रथ कहा जाता है, शरीर को नाव कहा जाता है। कोई बहुत बड़ी नाव हो तो उसको जहाज कहा जाता है। क्या कोई ऐसा भी शरीरधारी है जो बड़े से बड़ा जहाज का काम करता है? शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतरे पार नर, ऐसे रामायण में लिखा है। क्या मतलब हुआ है? ये संसार ऐसा विषय सागर है जिस विषय सागर में एक ही जहाज है जिसका नाम शास्त्रों में शंकर दिया है, शंकर चाप जहाज, यही चढ़ी उतरे पार नर। इस विषय सागर से पार क्षीर सागर में, विष्णु लोक में चले जाते हैं। उसको जहाज भी कहते हैं, उसको चाप भी कहते हैं। चाप माने धनुष। ऐसा पुरुषार्थ रूपी धनुष है जिस पुरुषार्थ रूपी धनुष को रावण भी नहीं हिला सका। क्या क्या कहा? रावण भी हिला ही नहीं सका। अंगद का नाम दे दिया। अंगद के पांव को रावण भी हिला ही नहीं सका। नाम क्या दिया? अंग द माने जिसने अपने सारे अंगों को सारी इंद्रियों को दान में दे दिया उसका नाम पड़ा अंगद। अंगद उसने रावण की सभा में अपना बुद्धि रूपी पांव ऐसा जमाया, ऐसी मत स्थापन कर दी कि रावण के बड़े बड़े दिग्गज सिर, दस सिर होते हैं ना, दसों धर्मों के कोई तो दस मुखिया इस दुनिया में होंगे, वो भी उसको हिला ही नहीं सके। तो उसको धनुष भी कह दिया है। जिस धनुष को, जिस पुरुषार्थी रूपी धनुष को रावण नहीं हिला सका, लेकिन सीता ने क्या किया? सीता ने अपने बाएं हाथ में धारण कर लिया। बाएं हाथ में क्यों? बामांगी कही जाती है ना स्त्री, तो बाएं हाथ में धारण कर लिया। वो चाप रूपी धनुष कहो, शरीर रूपी रथ कहो, वस्त्र कहो, वो झंडे में सबसे ऊपर दिखाया जाता है। सारी दुनिया में बड़े से बड़े क्रांति करने वाला, दुनिया में जब क्रांति होती है तो बड़े बड़े युद्ध होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? बड़े बड़े युद्ध होने लग पड़ते हैं। और युद्धों में लाल लाल खून बहता है या नहीं बहता है? हैं? बहता है। वो है स्थूल खून, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर रूपी वस्त्र उन्होंने लाल दिखाई दिया है। चैतन्य की बात या जड़ की बात है? चैतन्य खून है संकल्पों का, ऐसा संकल्पों का गरम गरम खून जो सारी दुनिया में सब धर्मों के फॉलोअर्स में ऐसी क्रांति लाता है कि सब अपने अपने धर्म को भूलकर सारी दुनिया एक ही धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो बोला स्वधर्मे निधनम से, स्व माने आत्मा, आत्मा के धर्म में मर जाना अच्छा। माने एक टाइम ऐसा आता है जो सारी दुनिया एक ही संकल्प में स्थिर हो जाती है। जो गीता का महामंत्र है क्या? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या है तेरे मन में? एक शिव बाप, ज्योति बिंदु दूसरा ना कोई, तो उसके मन में ज्योति बिंदु समाया हुआ है तो सबको ऑर्डर मिल रहा है, आदेश मिल रहा है, मेरे मन में समा जा, माना मेरे मन में ज्योति बिंदु है तो सबके मन में क्या होना चाहिए, ज्योति बिंदु होना चाहिए। लेकिन जन्म जन्मांतर जो ज्योति बिंदु आत्मा है वो निराकार को याद करने की आदि नहीं है, साकार संबंधियों को याद करने की आदि है। इसलिए परिचय दिया जाता है दुनिया को कि वो निराकार बाप जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की आत्माओं का सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है, वो निराकार जिस साकार में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के संबंध बन सकते हैं, और संबंध साकार होते हैं या निराकार होते हैं, है साकार होते हैं। सभी संबंधों की अपने अपने प्रकार की अनुभूति, वो अनुभूति का रस है, अपने अपने प्रकार की इंद्रियों से लिया जाता है। तो बताया कि बिंदी को याद नहीं कर सकते, सूक्ष्म रूप को छोटे रूप को याद नहीं कर सकते, तो क्या करो, बड़े रूप को ही याद करो। किसने कहा? शिव बाप ने कहा। शिव बाप को बड़ा रूप होता भी है? होता है, शिव बाप को तो बड़ा रूप होता ही नहीं। शिव बाप तो कितना भी पुरुषार्थ करे और पुरुषार्थ करने की उसे दरकार भी नहीं, वो तो है ही परम पुरुष। जब है ही ऑलरेडी परम पुरुष तो उससे बड़ा पुरुष कौन बनेगा, है? हाँ, तो वो नहीं कहता है क्या, नहीं मन मना भव तो ठीक है, बताया हाँ कि मेरे बड़े रूप को याद करो, उसका बड़ा रूप होता है? होता ही नहीं। जो कहता है छोटा रूप तुम्हें नहीं याद आता है ज्योति बिंदु, क्योंकि बिंदु को तो जितना छोटा बनाओ उतना छोटा बनेगा, इतना छोटा बन सकता है जो आज के वैज्ञानिक यंत्रों से छोटे छोटे कीटाणुओं को देख पाते हैं, ऐसा छोटा बिंदु बन सकता है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जैसे आत्मा उसको कहते हैं अणोणीयांशम, अणु से भी अनुरूप अति सूक्ष्म, तो वो याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो, मेरे बड़े रूप को याद। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। तो बड़ा रूप क्या हुआ, जिसमें प्रवेश करता है वो हुआ बड़ा रूप, जगत पिता, मनुष्य सृष्टि का बाप। वो जब संपूर्ण पुरुषार्थी बनता है तो देह को बिल्कुल भूल जाता है, देह की इंद्रियों को भी भूल जाता है, देह की इंद्रियों का रस लेना भी भूल जाता है। देह की इंद्रियों से सुख मिलता है ना, बाबा कहते सुख लेना है और सुख देना है, लेकिन शर्त लगा दी, एक के साथ सुख लेना है अनेकों के साथ नहीं लेना है। तो जो सुख लेना है वो सुख लेने की प्रक्रिया से परे चला जाता है। जब एक परे जाता है तो वो दूसरों को सिखला सकता है या नहीं सिखला सकता? वो ही दूसरों को सिखलाता है, अतीन्द्रिय सुख में आ जाओ। कैसे सुख में आ जाओ? इंद्रियों से परे की स्टेज का जो सुख है उसमें आ जाओ। सतयुग में जो पहला पत्ता कृष्ण जन्म लेता है वो भी ज्ञान इंद्रियों का सुख लेता है, देह की इंद्रिय का सुख लेता है, इसलिए आत्मा नीचे गिरती जाती है जन्म जन्मांतर। क्या तो क्या बताया है? बड़े रूप को याद करो, तो तरीका बता दिया। बड़े रूप में छोटे बिंदु को याद करो। क्या साकार में निराकार को याद करो, ये भी बता दिया कि वो ही बाप है सुप्रीम बाप, वो ही सुप्रीम टीचर है, वो ही सदगुरु है साकार। तो जब वो है ही एक सुप्रीम टीचर, बीज बोने वाला सुप्रीम बाप, जिस यज्ञ के आदि में बीज बोया था ज्ञान का, बोया या नहीं बोया? गीता में भी लिखा है अहम बीज प्रदप्पिता, मैं बीज बोने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप हूं। तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो सारी मनुष्य सृष्टि में ज्ञान का बीज बोने वाला है। वो ज्ञान का बीज बोने वाला ही पहला ब्राह्मण बना, इस ब्रह्मा की औलाद है, जिस ब्रह्मा के मुख से साक्षात्कारों का बयान मिल गया। तो मुख से सुना तो क्या हो गया? मुखवंशावली ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण बन गया। तो पहला ब्रह्मा कौन हुआ साकार में, स्त्री चोले के हिसाब से है? जगदम्बा। तो वो ही जगदम्बा अगले जन्म में वही आत्मा वही पाठधारी जब रुद्रमाला में माता का पाठ बजाती है, रुद्रमाला के बच्चों को जन्म देने का पाठ बजाती है, तो वो उस सूर्यवंश में बड़ी माता हो गई या नहीं हो गई? वो सूर्यवंशी बड़ी माता चंद्रवंशियों में जाकर के पुत्र वधु बनने वाली की गोद भरती है। बड़ बोली है तो बोल बोल के गोद भरेगी, वाचा से गोद भरेगी या समझानी से गोद भरेगी? वाचा से गोद भर देती है और वो सुनती है, लंबे कान वाली प्रभावित हो जाती है। तो देखो महाकाली ऐसी जबरदस्त है कि दुनिया में जो पवित्रतम पार्ट बजाने वाली आत्मा है जन्म जन्मांतर, उसको भी अपने आधीन कर लेती, तो किसी को छोड़ेगी? किसी को नहीं छोड़ती। ओम शांति।